डॉक्टर टेड हिल्डेब्रांट, ओटी इतिहास, साहित्य और धर्मशास्त्र, व्याख्यान 13, 2020, डॉक्टर टेड हिल्डेब्रांट। यह डॉक्टर टेड हिल्डेब्रांट हैं जो अपने पुराने नियम के इतिहास, साहित्य और धर्मशास्त्र पाठ्यक्रम में लेविटस की पुस्तक पर व्याख्यान नंबर 13, पवित्रता, शुद्धता कानून और समस्याएं। एसी प्रश्नोत्तरी पूर्वावलोकन 00:02:33। क्लास आइए यहीं से शुरुआत करें। आज हमें बहुत कुछ करना है। हम लेविटिकस की पुस्तक को कवर करने का प्रयास करने जा रहे हैं, जो पुराने नियम की सबसे आकर्षक पुस्तक है। हम आज इसे अपने लिए नृत्य करने का प्रयास करने जा रहे हैं। गुरुवार की प्रश्नोत्तरी के लिए हमारे पास क्या है? गुरुवार को क्वाड ब्रेक है, तो आपके पास गुरुवार की छुट्टी है। क्रिसमस की बधाई। अगले गुरुवार के लिए आप जोशुआ की पुस्तक पर काम कर रहे हैं। जोशुआ के लगभग 24 अध्याय। यह उतना बड़ा या बुरा नहीं है। वहां युद्ध की अवधारणा पर एक लेख है, और इसलिए यह आपके लिए दिलचस्प हो सकता है। यह युद्ध और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करने पर है, इसलिए यह उन दो विचारों को एक साथ रखता है। फिर कुछ स्मृति श्लोक भी हैं। भजन 100 शुरू होता है, प्रभु का जय जयकार करो। यह एक और प्रसिद्ध भजन है। भजन 23 जितना प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन इसमें कुछ छंद हैं, और यहोशू 1:08 है, जो वास्तव में जोशुआ की पुस्तक में एक उत्कृष्ट छंद है। तो आप जोशुआ पर काम कर रहे होंगे। मैं आप लोगों से मिलने की कोशिश शुरू करने जा रहा हूं। मैं संभवत पूरे सेमेस्टर में आपसे कभी नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन मैं तेजी से आगे बढ़ना शुरू करूंगा। हम आज लेविटिकस की किताब का एक अच्छा हिस्सा तैयार करेंगे, शायद पूरी नहीं। तो आप जोशुआ पर काम करने जा रहे हैं। हम निर्गमन में वापस कूदने जा रहे हैं और हम लेविटिकस में पहुंचेंगे। ऐसा करने से पहले आइए प्रार्थना के एक शब्द के साथ शुरुआत करें और फिर हम इस पर आगे बढ़ेंगे। पिता, हम इस दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम पर आपकी दयालुता और हमें अपना वचन देने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम मिस्र में अपने भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो इस दिन संघर्ष कर रहे हैं, जो उत्पीड़न के अधीन हैं, चर्च जलाए जा रहे हैं, ईसाइयों को मारा जा रहा है। हम अपने भाइयों और बहनों को याद करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनकी रक्षा कर सकें और इस समय वहां चल रही सभी अराजकता के बीच आप उन्हें अर्थ और उद्देश्य की भावना दे सकें। इस कक्षा में हमारी सहायता करें, क्योंकि हम लैव्य व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इसे ऐसे तरीके से समझाने में मेरी मदद कर सकें जो अच्छा हो, जो सटीक हो और आपकी पवित्रता और आपकी अच्छाई को दर्शाता हो। आप एक पवित्र भगवान हैं। आपको पिता कहना और यह जानना बहुत सौभाग्य की बात है कि आपने हमारी ओर से अपने पुत्र यीशु मसीह को दे दिया, और यह उसके अनमोल नाम में है कि हम प्रार्थना करते हैं। तथास्तु। बी गर्भपात पर निर्गमन कानून नहीं, 2:34 से 10:54। आइए निर्गमन की पुस्तक समाप्त करें। मैं जो करना चाहता हूं वह यह है कि इस एक कानून को एक्सोडस में पेश किया जाए। इसे केस लॉ कहा जाता है। केस कानून क्या है? क्या आपको एहसास है कि ऐसे कानून हैं? आप हत्या नहीं करेंगे, आप चोरी नहीं करोगे, तू झूठी गवाही न देगा। वे सामान्य सिद्धांत अपोडिक्टिक कानून हैं। एक अन्य प्रकार का कानून है जिसे केस लॉ कहा जाता है। एक मामले का कानून इस प्रकार है, यदि जॉनी शराब पीता है और जॉनी गाड़ी चलाता है, तो जॉनी को जेल में डाल दिया जाएगा। यह एक यदितब प्रकार का कानून है जो आपको विशिष्ट मामले देता है। इसीलिए वे इसे केस लॉ कहते हैं। यदि व्यक्ति ऐसा करेगा तो ऐसा ही होगा। यह यदि तो विशिष्ट मामलों के साथ यह निर्धारित करता है कि क्या होना चाहिए। तो निर्गमन अध्याय 21 में हमारे पास जो कुछ है वह एक विशिष्ट मामला कानून है। मुझे निर्गमन 21:22 का अंश पढ़ने दीजिए। यह कहता है, यदि पुरुष जो लड़ रहे हैं तो आपके पास दो लोग लड़ रहे हैं। अगर लड़ने वाले पुरुष किसी गर्भवती महिला को मारते हैं तो आपके पास दो लोग लड़ रहे हैं और क्या होता है? महिला इसे तोड़ने की कोशिश करती है या कुछ भी, वह झगड़े पर उतर आती है। आपके यहाँ दो लोग लड़ रहे हैं और फिर अगर गर्भवती महिला पर हमला हो जाता है और वह समय से पहले बच्चे को जन्म देती है लेकिन कोई गंभीर चोट नहीं है, अपराधी पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। जो व्यक्ति गर्भवती महिला को मारता है उस पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए, जो भी महिला का पति मांग करे और अदालत अनुमति दे। परंतु यदि कोई गंभीर चोट हो तो तुम प्राण की संति प्राण, आंख की संति आंख, दांत की संति दांत, हाथ की संति हाथ, पाव की संति पाव, जलने की संति जलन, घाव की संति घाव और चोट की संति चोट लेना। हम उसे क्या कहेंगे? लेक स्टैलियोनिस, क्या आपको आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत याद है? वह वास्तव में यहां सूचीबद्ध है। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ, जलने के बदले जलना, और इसे लेक्स कहा जाता है, टैलियोनिस, प्रतिशोध का नियम। इस मामले के कानून में प्रतिशोध का कानून दिया गया है। अब वास्तव में यहाँ क्या चल रहा है? आपके पास दो लोग लड़ रहे हैं, यह महिला बीच में कूदती है, वह लड़ाई को तोड़ने की कोशिश करती है, लड़का उसे मुक्का मारता है। अब यह कहता है कि इससे दो स्थितियां सामने आती हैं। एक तो यह कि कोई चोट न हो, किसको चोट नहीं, उस लड़के पर जुर्माना लगाया गया जिसने उसे मारा। महिला को कोई चोट नहीं आई है लेकिन महिला का स्पष्ट रूप से गर्भपात हो गया है या उसके एक बच्चा है और बच्चा है, यहाँ यह माना जाता है कि बच्चा मर जाता है। तो फिर जिस लड़के ने उसे मारा उसे बच्चे की हानि के लिए जुर्माना भरना होगा। तो फिर क्या होता है कि आपके पास ऐसी स्थिति होती है जहाँ मूल रूप से समय से पहले जन्म होता है और बच्चे को चोट लगती है। सबसे अधिक संभावना मृत्यु के कारण होती है क्योंकि उस समय समय से पहले जन्म होता था। वे प्रीमियर नहीं करते जैसा कि हम आज अस्पतालों में करते हैं जो जीवन बचाते हैं माँ और बच्चे का। उस समय बच्चा अक्सर मर जाता था। लेकिन ध्यान दीजिए कि जुर्माना क्या है। जुर्माना यह है कि शुल्क का भुगतान करना होगा। तो इससे भ्रूण पर सवाल उठता है, क्या भ्रूण के जन्म से पहले भ्रूण एक व्यक्ति है और भ्रूण अब महिला की पिटाई के परिणाम स्वरूप गर्भपात हो गया है? ध्यान दें कि यहाँ शुल्क लिया जाता है जिसकी व्यवस्था पति द्वारा की जाती है। तो जाहिर तौर पर यह समझौता योग्य है। यह शुल्क समझौता योग्य है और यह इस बात पर निर्भर हो सकता है कि वह किस महीने में थी, क्या यह जल्दी या बाद में थी और इसी तरह की चीजें। लेकिन अगर महिला को मारा जाता है और हमने कहा अगर उसे नुकसान हुआ है तो ठीक है, चलो वापस चलते हैं। यदि महिला को मारा जाता है तो यह दांत के बदले आंख के दांत के बदले आंख है। महिला के लिए आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत अगर वह क्षतिग्रस्त है। अब जो भ्रूण मर जाता है उसके लिए कुछ कम क्यों होगा, जुर्माना कम क्यों होगा? वैसे उस संस्कृति में भी अगर किसी गुलाम को चोट लगती है तो क्या आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत की बजाय गुलाम को चोट पहुंचाने के लिए कोई शुल्क दिया जाता था? तो क्या जुर्माना लगाने के लिए कोई निश्चित पदानुक्रम है? अब क्या यह अनुच्छेद हमें गर्भपात के मुद्दे के बारे में कुछ बताता है? लोगों ने इस मार्ग का उपयोग गर्भपात के लिए किया है। क्या गर्भपात वास्तव में यहाँ प्रश्न है? क्या यह अनुच्छेद गर्भपात के मुद्दे को संबोधित कर रहा है? नहीं, यह नहीं। दो लोग लड़ रहे हैं, एक महिला बीच में आती है और बेन। उन्होंने उसे मारा और उसका गर्भपात हो गया। अब मुझे इसके दूसरे पहलू पर काम करने दीजिए। क्या सजा के मामले में इरादा मायने रखता है? मैं ग्रेपवाइन रोड पर गाड़ी चला रहा हूँ। वहाँ एक बच्चा अपनी साइकिल चला रहा है। बच्चा अचानक स्पष्ट नीले रंग से अपनी बाइक मोड़ता है और ठीक मेरे सामने घुमाता है और मैं बच्चे को मारता हूँ। बच्चा मेरी कार के नीचे है। मैंने अभी अभी बच्चे को मारा है। प्रश्न, क्या उस बच्चे की हत्या के लिए मुझे जीवन भर जेल जाना पड़ेगा? क्या मुझे शायद जीवन भर इसका पछतावा रहेगा? हाँ, लेकिन क्या मुझे इसके लिए जेल जाना पड़ेगा? अब वैसे क्या उस स्थिति में मैंने बच्चे को मार डाला? मैंने बच्चे को मार डाला। प्रश्न, क्या मुझे हत्या के आरोप में जेल जाना पड़ेगा? मैं हत्या के आरोप में जेल क्यों नहीं जाता? तुम हत्या के आरोप में जेल जाओगे? क्या मैं यहाँ जेल जाऊंगा? अगर बच्चा ठीक मेरे सामने इस तरह घूम गया तो मेरे बचाव का एक हिस्सा यह होगा कि क्या यह मेरी गलती थी या मैं कुछ भी कर सकता था। मेरी कार में ब्रेक अच्छे थे और आप नहीं समझेंगे, मैंने शायद ब्रेक भी नहीं मारा था। बच्चा बस बाहर निकला और सब कुछ खत्म हो गया। प्रश्न, क्या कोई द्वेष और पूर्व विचार था? क्या द्वेष और पूर्व विचार मायने रखते हैं? हाँ। अब क्या यह संभव है, मान लीजिए कि मेरे ब्रेक खराब थे और मेरे ब्रेक मेरी कार को नहीं रोक सके, क्या आप इसे क्या कहेंगे? लापरवाही। लापरवाही और इस तरह की चीजें हो सकती हैं, लेकिन उस मामले में कोई दुर्भावना और पूर्व विचार नहीं था। अब आइए उस महिला पर वापस चलते हैं जो मार खा रही है। लड़का महिला को अपनी पीठ से उतार रहा है। महिला इस लड़के को अपने पति या किसी चीज से दूर करने की कोशिश कर रही है और वह भटक जाता है। वह उसे कोहनी या ऐसा ही कुछ देता है। प्रश्न, क्या लड़का महिला को अपनी पीठ से हटाने के लिए उसे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? हाँ, तो उसके लिए यह आंख से आंख मिलाकर चलता है। प्रश्न, वह बच्चे को मारता है और बच्चे का गर्भपात हो जाता है। क्या बच्चे के खिलाफ कोई इरादा था? बच्चे के खिलाफ कोई इरादा नहीं था। तो दूसरे शब्दों में, हाँ, महिला, वह उसे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जरूरी नहीं कि वह बच्चे को मारने की कोशिश कर रहा हो। इसलिए मुझे लगता है कि उन दोनों के बीच एक अंतर है। तो बच्चे के लिए जुर्माना दिया जाता है। क्या इसका गर्भपात से कोई संबंध है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको इस तरह से छंद निकालने और उन उद्देश्यों के लिए उनका उपयोग करने के बारे में वास्तव में सावधान रहना होगा जिनके लिए उन्हें नहीं दिया गया था। यह हमें गर्भपात के बारे में बाइबल की स्थिति बताने के लिए नहीं दिया गया था। वैसे क्या इसका भ्रूण से कोई संबंध है? हाँ, ऐसा होता है, लेकिन यह उस उद्देश्य के लिए नहीं दिया गया है और मुझे लगता है कि आपको इस तरह छंद निकालने और उन उद्देश्यों के लिए उनका उपयोग करने के बारे में सावधान रहना होगा जिनके लिए वे डिजाइन या इरादा नहीं है। इसके लिए मेरा यही कहना है, छंदों को पवित्र शास्त्र के संदर्भ से बाहर निकालने और उन्हें किसी भिन्न संदर्भ के लिए उपयोग करने के बारे में सावधान रहें जिसके लिए उन्हें डिजाइन नहीं किया गया था। इसे केस लॉ कहा जाता है। यदि दो पुरुष लड़ रहे हैं और यदि पुरुष महिला को थप्पड़ मारता है तो इसे केस लॉ कहा जाता है। तो अगर ये हुआ तो ये हुआ, तो ये उसकी सजा होगी। तो कुछ के लिए निहितार्थ यह है कि भ्रूण मानव है। हालांकि यह वास्तव में उस मुद्दे का समाधान नहीं करता है। बात ये नहीं है। क्या भ्रूण का मूल्य है? हाँ, लेकिन यह पूरे प्रश्न का उत्तर नहीं देता। वैसे मैं बहुत 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 दृढ़ता से जीवन समर्थक हूँ, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वह यह है कि आपको संदर्भ से सावधान रहना होगा। अच्छे तर्क विकसित करें और इस तरह के छंदों का उपयोग न करें जिनका इस तरह उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। सी लैव्य व्यवस्था का परिचय 10:55 से 12:24। अब लेविकस पर। लेविटिकस पुराने नियम की सबसे मजेदार किताब। मैं इसे दिलचस्प बनाने की कोशिश करने जा रहा हूँ। वास्तव में आपके साथ ईमानदार होने के लिए एक बार मैंने लेविकस की पुस्तक पर एक पूरा पाठ्यक्रम पढ़ाया था और वास्तव में हमने बहुत अच्छा समय बिताया था। समस्या यह है कि लेविटिकस की पुस्तक हमारी संस्कृति से हजारों वर्ष पुरानी है। पुस्तक का मुख्य विषय यह है, पवित्र बनो जैसे मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। यह प्रमुख विषय है, पवित्रता। वैसे इस किताब को लेविटिकस की किताब कहा जाता है। यदि आप यहाँ अंत से संकेत हटा दें, तो यह पुस्तक किसके बारे में है? लेविकस की पुस्तक। यह लेवियों के बारे में है, और लोगों का दूसरा समूह कौन होगा? लेवी और याजक। क्या फर्क पड़ता है? लेवी क्या है? वे लेवी के गोत्र के हैं। यदि वे लेवी के गोत्र से हैं, तो वे लेवी हैं। पुजारी क्या है? पुजारी कहां से आए? हारून के वंशज। हाँ, इस प्रकार हारून तो लेवी है, परंतु हारून के वंश के लोग याजक हैं। हारून को महायाजक के रूप में नामित किया गया था, उसके बच्चे उसके बच्चों के बच्चे भी पुजारी बन गए, इसलिए हारून के वंशज याजक हैं। लेवी तंबू के उपकरण ले जाते हैं। पुजारी क्या करते हैं? याजक वेदी और परमपवित्र स्थान और इस तरह की चीजों में सेवा करते हैं। याजक बलिदान करने में लगे रहते हैं, जबकि लेवी तंबू को उठाने वाले होते हैं। दी बाहरी और आंतरिक धर्म 12:25 से 14:03। क्या धर्म कुछ बाहरी आवश्यकताओं के साथ विशिष्ट रूप से व्यक्तिगत और निजी है? क्या हमने अपनी संस्कृति में धर्म का निजीकरण कर दिया है? क्या किसी के धर्म के बारे में सार्वजनिक क्षेत्र में बोलना लगभग अनुचित है? क्या उन्होंने, जहां तक सार्वजनिक अभिव्यक्ति का सवाल है, ईसाई धर्म की सार्वजनिक अभिव्यक्ति को खामोश कर दिया है? क्या इसे सार्वजनिक क्षेत्र में लगभग खामोश कर दिया गया है? आपका धर्म कुछ ऐसा माना जाता है जो व्यक्तिगत और निजी हो, कुछ ऐसा जिसे आप अपने तक ही सीमित रखें। यह हमारी संस्कृति में अजीब है ना? प्रश्न, क्या सार्वजनिक रूप से धर्म के बारे में बोलना या सार्वजनिक रूप से यौन कृत्यों को देखना अधिक अनुचित है? हमारी संस्कृति में कौन अधिक स्वीकृत है? हाँ, क्या आपको वहां व्यंग्य समझ आया? यह विस्मयकारी है। जो चीज बहुत निजी होनी चाहिए उसे सार्वजनिक किया जाता है, और यह ठीक है। जो कुछ सार्वजनिक होना चाहिए उसे खामोश कर दिया गया है। तो क्या मैं चाहता हूं कि आप इस संदर्भ में सोचें कि हमारी संस्कृति में धार्मिक अभिव्यक्ति को कैसे खामोश कर दिया गया है? यह बहुत उद्देश्यपूर्ण रहा है, और मैंने 40 वर्षों से इसे घटित होते देखा है। यह बहुत खास है, और अब सार्वजनिक रूप से धर्म के बारे में बोलना लगभग असंभव है। क्या धर्म में बाहरी चीजें होती हैं? क्या धर्म की कोई बाह्य अभिव्यक्ति होती है, या वह केवल वैयक्तिक और निजी ही है? कि पुराने नियम के अध्ययन में पंथ 14:04 से 23:57। यहाँ एक और है, पुराने नियम में पंथ क्या है? अब जब मैं पंथ शब्द का उपयोग करता हूँ तो कई बार लोगों का ध्यान इस आदमी जिमी जोन्स और कूलेड पीने और उन सभी लोगों पर जाता है जो मर चुके हैं। यह एक पंथ है। एक पंथ लोगों का ब्रेन वॉश होता है और वे इस पंथ के बंद संदर्भ में चले जाते हैं। हम पंथ के बारे में यही सोचते हैं। जब आप पुराने नियम के अध्ययन में होते हैं तो आप ऐसा नहीं सोच सकते। पुराने नियम के अध्ययनों में पंथ वह सब कुछ है जो आप बाहरी रूप से अपने धर्म का प्रतीक बनाने के लिए करते हैं। इसलिए उदाहरण के लिए, जब हमने कक्षा से पहले प्रार्थना की तो प्रश्न, क्या मैंने प्रार्थना करने के लिए अपना सिर झुकाया और अपनी आंखें बंद की? मैंने सिर झुका लिया, क्या वह पंथ का हिस्सा है? हाँ, यह पंथ का हिस्सा है। यह कुछ ऐसा है जो मैं बाहरी रूप से करता हूँ। जब कोई प्रार्थना करता है तो क्या कुछ लोग सम्मान दिखाने के लिए अपनी टोपी उतारकर प्रार्थना करते हैं? क्या कोई ऐसा करता है, खुद को क्रॉस करें? क्या यह पूजा का एक बाहरी कार्य है जो आप धर्म का प्रतीक बनने के लिए करते हैं? वो तो बाहरी बातें हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे चर्चों से आते हैं जो पूजा पद्धति जैसी बाहरी चीजों के मामले में पंथ के साथ बहुत कुछ करते हैं। क्या आप में से कुछ लोग ऐसे चर्चों से आते हैं जिनमें बहुत अधिक पूजा पाठ होता है? क्या आप में से कुछ लोग ऐसे चर्चों से आते हैं जिनमें लगभग कोई पूजा पाठ नहीं होता है? तो आप विभिन्न परंपराओं में शामिल हो जाते हैं। पंथ वह सब कुछ है जो आप बाहरी तौर पर अपने धर्म का प्रतीक बनाने के लिए करते हैं। वैसे क्या कुछ लोग टी शर्ट पहनकर बाहरी तौर पर अपने धर्म का प्रतीक होंगे? मैं ग्रीक कक्षा में हूं और एक बच्चे की टी शर्ट पर लिखा है यीशु नियम। क्या वह उसके धर्म की बाहरी अभिव्यक्ति है? तो आप बाहरी तौर पर जो कुछ भी करते हैं वह कह सकते हैं आम तौर पर चर्चों में धार्मिक अनुष्ठान एक पंथ है। क्या पुराने नियम में धर्म की बहुत अधिक बाहरी अभिव्यक्ति है? हाँ, उन्हें यह सोचना था कि वे विभिन्न तरीकों से ईश्वर तक कैसे पहुंचे। इसलिए जब आप ईश्वर के पास पहुंचते हैं तो पंथ का संबंध बाहरी चीजों के महत्व से होता है। क्या बाहरी चीजें मायने रखती हैं या केवल आपका दिल मायने रखता है? जब आप किसी से संपर्क करते हैं तो क्या बाहरी चीजें मायने रखती हैं? अब मैंने एक अनुष्ठान का उपयोग किया। मैं इसे एक यातना अनुष्ठान कहता हूँ जो मैंने अपनी पत्नी के साथ किया था। मुझे शायद इसे इस तरह से नहीं कहना चाहिए। आपको यह समझना होगा कि जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मेरी पृष्ठभूमि कैसी रही। जब मैं हाई स्कूल में बच्चा था तब से मैं एथलेटिक्स खेलते हुए बड़ा हुआ हूँ। मैंने फुटबॉल, बास्केटबॉल और टेनिस खेला है, 3 सीजन, 3 अलग अलग खेल। जब मैं कॉलेज गया तो मैंने 2 अलग अलग सीजन खेले, बास्केटबॉल और टेनिस। मैं अब कसरत नहीं करता, यह स्पष्ट है। लेकिन जब मैं छोटा था तो क्या मैं हर दिन वर्कआउट करता था? पसीना मेरे जीवन का हिस्सा था। क्या पसीना मुझे परेशान करता है? जवाब न है। मैं अपनी आधी जिंदगी पसीने से तरबतर रहा हूं। तो फिर अब अचानक मुझे लगता है कि मैं शादीशुदा हूं, इसलिए मैं बाहर लॉन काट रहा हूं और फिर मैं निराई करता हूं और मैं यह सब काम बाहर कर रहा हूं और मैं अंदर आता हूं और मुझे एक टी शर्ट मिलती है, तो मैं पसीने से भीग गया हूँ। फिर मेरी यह रस्म होती है और मैं अपनी पत्नी के पास आता हूँ और कहता हूँ, प्रिये, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? मैं आलिंगन करना चाहता हूँ। मैं आता हूँ और अक्सर जांचता हूँ कि वह मुझसे कितना प्यार करती है। अब सवाल यह है कि क्या वह मुझसे प्यार करती है या नहीं। जब तुम इस तरह पसीने से लथपथ हो तो मुझसे प्यार मत करो। लेकिन मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि क्या होता है, ऐसा कैसे होता है जब मैं अपनी पत्नी के पास जाता हूँ और मैं पसीने पसीने हो जाता हूँ? क्या दृष्टिकोण मायने रखता है? क्या इसका असर इस पर पड़ता है कि वह मेरे बारे में क्या सोचती है? जब मैं पूरी तरह पसीने से तर हो जाता हूँ तो इससे उसे गुस्सा आता है और वह कहती है, मुझसे दूर हो जाओ, मुझसे दूर हो जाओ, मेरी पत्नी अब मुझसे प्यार नहीं करती, नहीं, नहाने का समय हो गया है दोस्त, अपना कार्य एक साथ करने का समय आ गया है। तो मैं जो कह रहा हूँ वह है, दृष्टिकोण मायने रखता है। इसका हमारे ईश्वर तक पहुँचने के तरीके पर क्या प्रभाव पड़ता है? दूसरे दिन मैं अपने कार्यालय में था। आमतौर पर जब मैं अपने कार्यालय में पढ़ता हूँ तो मैं अपनी कुर्सी पर पीछे पैर रखता हूँ, अपने पैर अपनी मेज पर रखता हूँ और पढ़ता हूँ। इसी तरह मैंने पढ़ा, मैं पलटवार करता हूँ, मैं अपने पैर अपनी मेज पर रखता हूँ और पढ़ता हूँ। अचानक मुझे दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। मैं मुड़ता हूँ, यह तीसरी मंजिल है, वहाँ सभी फैकल्टी के साथ फ्रॉस्ट है और फैकल्टी के अलावा कोई भी वहाँ नहीं जाता है, कोई भी वहाँ तक अपना रास्ता नहीं ढूंढ सकता है और यह एक भूल भुलिया की तरह है। तो हम वहाँ हैं और अचानक मैं मुड़ता हूँ और हॉर्न बजाता हूँ। वहाँ गॉर्डन कॉलेज के अध्यक्ष हैं। मैंने अपने पैर अपनी मेज पर रख दिए हैं और कह रहा हूँ, पवित्र गाय, वहाँ राष्ट्रपति हैं। अब सवाल यह है कि क्या मैं इसके बारे में थोड़ा शर्मिंदा हुआ? ये कॉलेज के अध्यक्ष हैं। क्या मैं चाहता हूँ कि जब कॉलेज का अध्यक्ष मेरे पास आए तो मैं अपनी मेज पर पैर ऊपर करके बैठा रहूं? मैंने पिछले 12 वर्षों में वहां के राष्ट्रपति को कभी नहीं देखा है। क्या मुझे यह लड़का पसंद है? वह वास्तव में बहुत सक्रिय है, इसलिए वह मेरे कार्यालय में है और अचानक ऐसा लगता है जैसे वाह, मैं राष्ट्रपति को यहाँ रखने का आदि नहीं हूँ, हमारी बातचीत हुई। वह सचमुच एक अच्छा लड़का है। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वह यह है, राष्ट्रपति प्रकट होते हैं, ठीक है, अब मान लीजिए इलेन फिलिप्स, जिन्हें मैं 35 वर्षों से एक अच्छे दोस्त के रूप में जानता हूँ। इलेन आ गई और मैंने अपने पैर डेस्क पर रख दिए। क्या यह बहुत बड़ी बात है? नहीं, वह मुझे जानती है, इसमें कोई समस्या नहीं है। प्रश्न, राष्ट्रपति आए, बड़ी बात? तो सवाल, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि आप किस तरह से संपर्क करते हैं, उस व्यक्ति का कद क्या है? क्या आप अपने दोस्तों से उसी तरह संपर्क करते हैं जैसे आप किसी ऐसे व्यक्ति से करते हैं जो आपका बॉस है या कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है? आप संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति से कैसे संपर्क करेंगे? क्या यह भावना होगी कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वहां सम्मान की भावना है? तो मैं जो कह रहा हूँ वह यह है कि जैसे ही आप भगवान के पास आते हैं, क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो भगवान कहते हैं जो उनके लिए घृणित हैं और क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो भगवान को पसंद हैं? असल में मैं भजन 15 का जिक्र कर रहा हूँ। क्या भगवान को गपशप करने वाले पसंद हैं? नहीं, वह नहीं करता। तो क्या आप गपशप करते हैं और भगवान के पास आते हैं? भगवान कहते हैं, मुझे यह पसंद नहीं है। क्या ईश्वर ऐसे लोगों को पसंद करता है जो धर्मी हैं, जो दयालु हैं, जो न्यायी हैं, जो निष्पक्ष हैं, जो गरीबों के प्रति दयालु हैं? हाँ, वे लोग भगवान को पसंद हैं। तो यह संपूर्ण लेविटिकस की पुस्तक यह वर्णन करती है कि कोई व्यक्ति पवित्र ईश्वर के पास कैसे पहुंचता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसके लिए घृणित हैं, जो उसके लिए अपमानजनक हैं और जो उसके लिए घृणित हैं। यह भीगी हुई टी शर्ट के साथ उसके पास आने और गले लगाने के लिए कहने जैसा है। यह उस समय उचित नहीं है क्योंकि आप गलत रास्ते पर आ रहे हैं। तो लेविकस की पुस्तक इस दृष्टिकोण का वर्णन करती है। अब लगभग उसी चीज को देखने का एक और तरीका यहाँ है, जीवन में धर्मनिरपेक्ष क्या है। मेरी कार में गैस कम है। मैं शायद या कल सुबह घर जाते समय कुछ गैस खरीदने जा रहा हूँ। प्रश्न, जब मैं गैस खरीदने जाता हूँ तो क्या वह धर्मनिरपेक्ष या पवित्र है? खैर, यह दरिद्रता ही है। लेकिन क्या यह धर्मनिरपेक्ष या पवित्र है? जब मैं गैस स्टेशन जाता हूँ तो यह एक धर्मनिरपेक्ष चीज है। मैं शायद इस सप्ताह के अंत में सैम क्लब जाऊंगा और कुछ खाना खरीदूंगा क्योंकि मेरा बेटा वापस आ रहा है और वह घोड़े की तरह खाना खाता है। इसलिए मुझे यह सारा खाना और सामान खरीदने की जरूरत है। जब मैं सैम के क्लब में जाता हूँ तो क्या वह धर्मनिरपेक्ष या पवित्र है? यह फिर से एक धर्मनिरपेक्ष गतिविधि है। मैं खरीदारी के लिए बाहर जाता हूँ और यह सारा खाना खरीदकर घर ले आता हूँ, तो पवित्र क्या होगा? क्या चर्च जाना अधिक पवित्र होगा? क्या मेरी बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना अधिक पवित्र चीजें होंगी? मेरा सवाल यह है कि जब मेरी पत्नी खरीदारी करने जाती है तो क्या वह धर्मनिरपेक्ष या पवित्र है? हाँ, वास्तव में यह पता चला है कि आप में से कई लोगों ने प्रश्न का उत्तर दिया है और एक व्यक्ति के रूप में आपको इसकी आदत डालनी होगी। वह पवित्र समय है। लेकिन वैसे भी पवित्र है चर्च जाना, अपनी बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना और ये काम करना पवित्र माना जाता है। लेविकस की पुस्तक हमें क्या बताती है? और यह लेविकस की पुस्तक का एक बड़ा संदेश है और यह एक महत्वपूर्ण संदेश है। लेविकस की पुस्तक हमें बताती है कि एक व्यक्ति का संपूर्ण जीवन, हम जो कुछ भी करते हैं वह पवित्र है। हम जो कुछ भी करते हैं वह पवित्र है। जब यहूदी लोग भोजन करने बैठते थे तो क्या उन्हें भोजन के प्रकार में ईश्वर के बारे में सोचना पड़ता था? हाँ, जब एक इसराइली स्त्री को बच्चा होता है तो क्या उसे उस बच्चे के जन्म के समय परमेश्वर के बारे में सोचना पड़ता है और वह कितने दिनों तक अशुद्ध रहती है? दरअसल जब इसराइली लोग रेगिस्तान में होते हैं और शौच के लिए जाते हैं, तब भी क्या उन्हें ईश्वर के बारे में सोचना पड़ता है? क्या वे खुद को कहीं भी राहत दे सकते हैं? क्या भगवान ने उनसे कहा था कि उन्हें शिविर के बाहर शौच करना होगा और उसे दफनाना होगा? हाँ, इसलिए सारा जीवन पवित्र है। यहाँ डॉक्टर विल्सन की एक महान कहावत है, आप में से कितने लोग अपनी पढ़ाई को पवित्र मानते हैं? क्या किसी ऐसी चीज के रूप में अध्ययन करना या करना संभव है जो पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष हो? क्या कैलकुलस को पवित्र बनाया जा सकता है? डॉक्टर विल्सन जो कहते हैं वह यह है, अध्ययन पूजा का सर्वोच्च रूप है। दूसरे शब्दों में वह कह रहा है कि अपनी पढ़ाई करो। क्या तुम अपनी पढ़ाई भगवान को सौंप सकते हो? क्या आपका गणित या जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी, जो भी हो, साहित्य का अध्ययन भी भगवान को अर्पित किया जा सकता है? इसलिए संपूर्ण जीवन और विशेष रूप से अध्ययन पूजा का सर्वोच्च रूप है। सारा जीवन पवित्र है, यही लेविकस का संदेश है। सब कुछ खास है, सब कुछ पवित्र है, इसमें कोई लौकिक पवित्र भेद नहीं है। लेविकस का कहना है कि जो धर्मनिरपेक्ष और पवित्र है वे एक हैं। सारा जीवन पवित्र है और ईश्वर की उपस्थिति में जीना चाहिए। लेव्य व्यवस्था में एफ पवित्रता थीम 23:58-29:21। अब पवित्रता का क्या अर्थ है? यह लेविटिकस की पुस्तक का मुख्य पद है। आप इस श्लोक से अस्पष्ट रूप से परिचित हो सकते हैं। पवित्र बनो क्योंकि मैं यहोवा हूं, ध्यान दीजिए कि इसे कैसे लिखा जाता है। कैपिटल एल, कैपिटल ओ, कैपिटल आर, कैपिटल डी। इसके पीछे हिब्रू शब्द क्या है? यह यहोवा या यहोवा है। देखें कि यह सब कैसे पूंजीकृत है। तो यह भगवान के लिए शब्द है, क्योंकि मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ। ईश्वर क्या हिब्रू शब्द होगा? एलोहीम भगवान का सबसे अनमोल नाम। वह कहता है, क्योंकि मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर पवित्र हूँ, इसलिए तुम्हें पवित्र रहना है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। हमें उसकी पवित्रता को प्रतिबिंबित करना है। अब नए नियम में 1 पत्रस 1:15 उसी आदेश को प्रतिध्वनित करता है। तो दूसरे शब्दों में यह केवल पुराने नियम की अवधारणा नहीं है। 1 पत्रस भी यही बात कहता है, पवित्र बनो, इसलिए हम ईसाइयों को पवित्र होना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। तो पीटर भी उसी प्रकार की बात दोहराता है। अब पवित्र होने का क्या मतलब है? पवित्रता का मूल विचार, मुझे यहाँ यह वाक्यांश पसंद है, पूरी तरह से अलग। पवित्रता या दोष का मतलब यह है कि ईश्वर पूरी तरह से अलग है। ईश्वर आपके द्वारा अब तक अनुभव की गई किसी भी चीज से बिल्कुल अलग है। भगवान अलग है, वह बिल्कुल अलग है। आपने अपने जीवन में जो कुछ भी अनुभव किया है, वह उससे बिल्कुल अलग है। वैसे यह हमें क्या बताता है? जब हम वास्तव में ईश्वर से मिलेंगे तो क्या हम सभी चौंक जाएंगे? जब हम ईश्वर से मिलेंगे तो क्या हम सभी पूर्णतः अन्य से मिलेंगे? दूसरे शब्दों में, इस संसार में ईश्वर के समान कुछ भी नहीं है। वह बिल्कुल अलग है। हमारी सभी कल्पनाएं, हमारे सभी आश्चर्य, ईश्वर हमारी कल्पना से भिन्न है। पवित्रता के विचार का अर्थ है पृथकता का विचार। वह अलग है, वह अलग है, वह शेष सृष्टि से अलग है, उसके जैसा कुछ नहीं है। वह अलग है, वह सृष्टि से भिन्न है। ईश्वर पूर्णतया अद्वितीय है। वह सुई जेनेरिस है, वह एक तरह का है। पूरे ब्रह्मांड में उसके जैसा केवल एक ही है। वह विशेष है। यह पवित्रता कहने का एक और तरीका हो सकता है। यह कहना है, वह विशेष है, पवित्रता कुछ विशेष, कुछ अलग, विशिष्ट और अद्वितीय बना रही है। यशाया इसे इस प्रकार कहता है। वैसे यशाया की किताब में भी पवित्रता की अवधारणा पर बहुत कुछ है। यशाया यह कहता है, तू मेरी तुलना किससे करेगा? अब सबसे पहले तो ये कि ये कैसा सवाल है? क्या वह उस प्रश्न के उत्तर की आशा कर रहा है? आप मेरी तुलना किससे करेंगे? उत्तर क्या है? क्या वह संज्ञानात्मक उत्तर मांग रहा है? क्या यह एक अलंकारिक प्रश्न है? क्या अलंकारिक प्रश्न उत्तर की अपेक्षा रखता है? नहीं, तो वह यहाँ क्या कर रहा है? अलंकारिक प्रश्न प्रश्न के भेष में एक वक्तव्य है। वह यहाँ क्या कहना चाह रहा है? आप मेरी तुलना किससे करेंगे? वह वहाँ क्या बयान दे रहे हैं? भगवान जैसा कोई नहीं है। क्या ईश्वर के समान कोई नहीं है? तो यहाँ कथन, आप मेरी तुलना किससे करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आप उसकी तुलना कर सकें। ऐसा कोई भी नहीं है जिससे आप ईश्वर की तुलना कर सकें। या मेरे बराबर कौन है? ईश्वर का कोई समान नहीं है, पवित्र व्यक्ति का कहना है। पुराने नियम के विद्वान इसे यहोवा की अतुलनीयता कहते हैं। हम जो कुछ भी जानते हैं वह उससे बिल्कुल अलग है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हम उसकी तुलना कर सकें, वह बिल्कुल अलग है। आपको कुछ विचार रखने की जरूरत है। अब मुझे लगा कि आप दूसरे रास्ते पर जा रहे हैं। आप में से कुछ लोग कहेंगे, ठीक है, हम भगवान के बारे में कुछ जान सकते हैं क्योंकि हम भगवान की छवि में बनाए गए हैं, इसलिए हम भगवान के बारे में कुछ जानते हैं। ठीक है, हमें इसे एक तरफ रखना होगा और कहना होगा, हाँ, ईश्वर प्रेम है। क्या हम प्यार करना जानते हैं? हाँ, हम प्यार करना जानते हैं। क्या हम करुणा जानते हैं? हाँ ठीक है। क्या हम न्याय, धार्मिकता और इस प्रकार की चीजों को जानते हैं? हमारे पास उन चीजों के बारे में विचार हैं, लेकिन यह जो कह रहा है वह उससे परे हैं। दूसरे शब्दों में, वे श्रेणियां ईश्वर का वर्णन नहीं करती जो उन सभी चीजों से परे हैं। तो पवित्रता की बात ईश्वर की परेता के बारे में है। इसका मतलब यह नहीं है कि पूरी तरह से कोई कनेक्शन नहीं है। दूसरे शब्दों में, जब आप इस तरह के एक बयान को पढ़ना शुरू करते हैं, तो वह कह रहा है, क्योंकि हम उसकी छवि में बने हैं, ऐसी चीजें हैं जहां हम भगवान के समान हैं, और मुझे लगता है कि लुईस वहां इसका जिक्र कर रहा है। लेकिन एक और अर्थ है जिसमें हम कुछ मायनों में भगवान के समान हैं, फिर भी कुछ अन्य मायनों में वह हमारे द्वारा जीवन में अनुभव की गई किसी भी चीज से परे हैं। तो पवित्रता उस परेपन की ओर इशारा करती है। इसलिए पवित्रता उस परेपन, अन्यपन पर ध्यान केंद्रित करती है। यह कहने का एक और तरीका होगा। तो यह यशायाह में एक सुंदर कविता है। जी, पवित्रता का मतलब दूरदर्शिता नहीं है। 29:22-51। अलगाव के इस विचार के बारे में यशायाह की ओर से एक और बात यहाँ दी गई है। ईश्वर अलग है, वह हर चीज से अलग है। लेकिन क्या अलगाव का मतलब दूरदर्शिता है? यशायाह 57:15 से इस श्लोक को देखें। यह एक सुंदर श्लोक है। यह कहता है, क्योंकि ऊंचा और ऊंचा व्यक्ति यही कहता है, इसलिए भगवान स्वयं को कहते हैं, यह वही है जो उच्च और बुलंद व्यक्ति कहता है, वह ऊंचा है, वह ऊंचा है, और वह वहां है। उच्च और उदात्त व्यक्ति यही कहता है, वह जो हमेशा के लिए रहता है। दूसरे शब्दों में, दोनों दिशाओं में अनंत काल, वह जो हमेशा के लिए रहता है, जिसका नाम है क्या? पवित्र। ठीक है, और यहाँ फोकस इसी पर है। जिसका नाम पवित्र है, वह पूरी तरह से अलग है, वह हमेशा के लिए रहता है, वह उच्च और बुलंद व्यक्ति है, वह हमेशा के लिए रहता है, उसका नाम पवित्र है। वह कहता है, मैं ऊंचे और पवित्र स्थान में रहता हूं। पवित्र स्थान वह है जहां ईश्वर रहता है। उसका नाम पवित्र है और वह ऊंचे और पवित्र स्थान में रहता है, एक अलग अलग विशेष अद्वितीय स्थान। वह कहता है, मैं इस पवित्र स्थान में रहता हूं, तो आपको इस आदमी की छवि ऊंची, ऊपर उठाई हुई, पवित्र मिलती है, और फिर कविता यहां इस लेकिन के साथ बदल जाती है। यह सुंदर है। वह कहता है, ठीक है, यह ऊंचा और पवित्र भगवान वह किसके साथ रहता है? लेकिन यह भी उसके साथ जो खेदित और दीन आत्मा है, पश्चाताप का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, टूटे हुए ईश्वर किसके साथ रहता है? ऊंचे और बुलंद ईश्वर, पवित्र जो अलग है, जो इस ऊंचे और पवित्र स्थान में रहता है, वह टूटे हुए लोगों के साथ रहता है। क्या आप बारी देखते हैं? आपको इस पवित्र ईश्वर के साथ रहने के बजाय मिलता है, वह उन सभी लोगों के साथ रहता है जो ऊंचे और पवित्र हैं, जो टूटे हुए, पिसे हुए और आत्मा में दीन हैं। अब वैसे हमारी संस्कृति हमें क्या बताती है? क्या आपको अपना प्रचार करना है? आपको आश्वस्त होना होगा, आपको खुद को बढ़ावा देना होगा, आपको खुद को ब्रांड बनाना होगा, आपको खुद को जानना होगा। भगवान किसके साथ रहते हैं? आत्मा में दीन के साथ, दीन के साथ विनम्र, टूटे हुए लोगों के साथ। ये देखने में खूबसूरत है। तो भगवान की पवित्रता, क्या इसका मतलब यह है कि वह दूर है? भगवान टूटे हुए लोगों के साथ रहता है। और यह मुझे यह पसंद है कि यह कविता इस उच्च और उदात्त व्यक्ति से उन लोगों की ओर स्थानांतरित हो जाती है जो नीच हैं, जिनके साथ वह रहता है। यह यशायाह की एक और सुंदर कविता है। एच पवित्रता के प्रति प्रतिक्रिया, ईश्वर का भय 31:53-54। अब पवित्रता के बारे में क्या? क्या पवित्रता का अर्थ यह है कि हमें उससे डरना चाहिए? जब परमेश्वर की पवित्रता आती है तो क्या यह भय आता है? वैसे बाइबल क्या कहती है? ईश्वर का भय ज्ञान की शुरुआत है, लेकिन हम में से कितने लोगों को सिखाया गया है कि ईश्वर के डर का मतलब वास्तव में ईश्वर का डर नहीं है, बल्कि यह है कि आप ईश्वर का सम्मान करते हैं, कि ईश्वर अद्भुत है और ईश्वर के भय का वास्तव में डर नहीं है। इसका मतलब है श्रद्धा, मैं आपको केवल यह बताना चाहता हूँ कि ईश्वर के भय का अर्थ है ईश्वर का भय, ईश्वर का आतंक। अब वैसे क्या ईश्वर के भय की धारणा का अर्थ श्रद्धा और सम्मान भी है? हाँ, ऐसा होता है। इसका अर्थ आज्ञाकारिता भी है। दरअसल मैंने उस अवधारणा पर काम किया है। वास्तव में मैंने पिछले नवंबर में ही ईश्वर के भय पर एक पेपर किया था। यह अब ऑनलाइन है। यह एक दिलचस्प अवधारणा है। ईश्वर के भय का एक हिस्सा भय की यह धारणा है। आप में से कितने लोग डरते हैं? क्या कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो डर पैदा करते हैं? आप सड़क पर यात्रा कर रहे हैं, अचानक एक आदमी आपके पीछे आ जाता है। उसकी कार के शीर्ष पर रोशनी का एक सेट है और आपको पता नहीं है कि आप कितनी तेजी से जा रहे थे। प्रश्न, डर? मुझे पिछले सप्ताहांत इसका अनुभव हुआ। मेरा बेटा मेरे दूसरे बेटे से मिलने के लिए लोगान हवाई अड्डे से डेनवर के लिए उड़ान भर रहा था और वे एक का शिकार करने जा रहे थे। तो मेरे पास एक बंदूक 30-06 है और यह एक केस में है। तो मैं और मेरा बेटा नीचे गए, हमने उसे नीचे लिया। उनका विमान 9:20 पर था, इसलिए हम लगभग 8:30 के करीब वहां थे। मैं और मेरा बेटा ऊपर जाते हैं और मैं अपनी बंदूक का डिब्बा लेता हूं और इसलिए वह बाहर जा रहा है और इसलिए उसके पास डेनवर में मेरे दूसरे बेटे के लिए एक बंदूक है जिसने सभी एक का पता लगा लिया है। हमने गन केस लगा दिया है और वे सामान की जाँच करने जा रहे हैं। तो यह होकर रहेगा। जाहिरा तौर पर आपको यह घोषित करना होगा कि आप बंदूक के साथ उड़ रहे हैं, भले ही आप इसकी जांच कर लें। और मैं आपके साथ ईमानदार होने के लिए कानूनों को नहीं जानता था और मेरे बेटे को भी कानूनों को नहीं पता था, इसलिए उन्होंने बंदूक का डिब्बा और चीजें ले ली और फिर मैं और मेरी पत्नी घर चले गए। तो उसे अपने हवाई जहाज पर चढ़ना चाहिए था। अचानक लगभग 9:00 हमारे पास मेरे बेटे का फोन आता है। पिताजी, आप इस मामले को कैसे खोलेंगे? वे चाहते हैं कि मैं इस मामले को खोलूं। मैंने कहा, इस मामले को खोलो से आपका क्या मतलब है? उन्होंने कहा कि उसके बाहर निकलने से ठीक पहले उन्होंने उसे एक तरफ खींच लिया। उन्होंने उसे एक तरफ खींच लिया और उस पर मामला खोलने के लिए दबाव डाला। मैंने कहा, ठीक है, मैंने तुम्हें इसकी चाबी दे दी है। उन्होंने कहा, हाँ, लेकिन चाबी काम नहीं करेगी और इसलिए मैंने उससे कहा कि यह विशेष चीज है जहां तुम्हें कुंजी के साथ बंदर करना होगा। तो मैंने उसे चाबी से बंदर बांट करवाया और उसने कहा, ठीक है, मैं समझ गया। तो फिर उसने फोन रख दिया। लगभग 10 बाद वह फिर से फोन करता है और कहता है, ठीक है, अब मैं इस चीज को कैसे लॉक करूं? और मैं कहता हूं, ठीक है, आप वापस जाएं और आपको सही रास्ते पर आना होगा और आपको इसे थोड़ा महसूस करना होगा। और मैंने कहा, गियर मत तोड़ो वरना आपका काम हो गया। तो फिर अचानक वह जाता है और वापस बुलाता है। इस बीच मेरी पत्नी घबरा रही है क्योंकि उसे एहसास हुआ है कि हथियार के साथ बिना बताए उड़ान भरने के कारण उसे अलग कर दिया गया है। यह एक घोर अपराध है। यह एक संघीय अपराध है। मेरी पत्नी घबरा रही है और वह रो रही है और रो रही है और यह कह रही है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने उसे उसके बिना जाने दिया। आपने अपने बेटे को नहीं बताया। मैंने कहा, मुझे नहीं पता था कि आपको इसकी घोषणा करनी होगी। इस बीच मेरा दूसरा बेटा फोन करता है और वह चिल्लाना शुरू कर देता है। वह अपने जीवन में मुझ पर कभी नहीं चिल्लाया। वह कहता है, पिताजी, मैं आप पर विश्वास नहीं कर सकता। वैसे भी वह मुझ पर भड़क जाता है और वह कहता है, आप बेहतर होगा कि आप अपनी पूंछ नीचे कर लें। आपके बेटे को अभी जेल भेजा जा रहा है और उसे आपकी मदद की जरूरत होगी। बेहतर होगा कि आप वहीं वापस आ जाएं। मैंने कहा, ठीक है, बेहतर होगा कि मैं वहीं वापस आ जाऊं। इस बीच जज ने मेरी बेटी को फोन किया, जिसकी शादी एक शीर्ष वकील से हुई है, और मेरा दामाद, जो एक वकील है, जज को बताता है कि वह एक दोस्त को जानता है जो अपने हथियार की घोषणा किए बिना बंदूक लेकर चलता है, और उसे अंदर डाल दिया गया था 2 साल की जेल। जिस व्यक्ति को जेल में डाला गया वह एक वकील था। तो अब अचानक हम कार में कूद पड़े। हम वहां जा रहे थे और रॉबर्ट बुला रहा था। उसे बोस्टन में एक अच्छा वकील मित्र मिला है और यह रात के 11 बजे की तरह है, और वह कह रहा है, इससे आपको हजारों डॉलर का खर्च आएगा और वह अभी भी जेल जा सकता है क्योंकि मुझे यकीन नहीं है कि मैं यह कर पाऊंगा। इसलिए वह अपने वकील मित्र को फोन कर रहा है। हम वहां नीचे जा रहे हैं। प्रश्न, क्या मेरे अंदर डर था? मैं यह महसूस करते हुए वहां नीचे जा रहा हूं कि यह मेरी बंदूक है। क्या यह संभव है गॉर्डन कॉलेज के प्रोफेसर अपने बेटे को अधिकृत हथियार देने के लिए जेल में बैठे हैं? मैं सोच रहा हूं, मैंने इस बच्चे के लिए 7 महीने तक प्रार्थना की जब अफगानिस्तान में उस पर हर रोज गोलियां चल रही थीं। भगवान उसे अमेरिका वापस लाते हैं और जब वह अमेरिका वापस आता है तो वे उसे जेल में डाल देते हैं। तो मैं घबरा रहा हूं और नीचे जा रहा हूं। लेकिन सवाल, क्या डर था? अब सवाल, क्या कानून का डर था? पुलिस के? क्या तुम लोगों को कभी पुलिस का डर हुआ? तो असली डर था। तो अब आप कहते हैं कि भगवान के साथ, इसका मतलब यह नहीं है पुलिस मुझे जेल में डाल सकती है। क्या ईश्वर के पास इससे परे अन्य कार्य करने की शक्ति है? इसलिए मैं जो कह रहा हूं वह ईश्वर का भय है। आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत है। मैं जानता हूं कि हम कोई डर नहीं संस्कृति में हैं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत है। वैसे मैं वास्तव में उस व्यक्ति से मिला जिसने मेरे बेटे का साक्षात्कार लिया था। मैं वहां आया और मैंने कहा, माफ करें, क्या यहां कोई मुझे बता सकता है कि क्या इलियट हिल्डेब्रांट डेनवर के लिए विमान में चढ़े थे और वह आदमी इसे मशीन में मुक्का मारने जा रहा था? वहां एक और आदमी कोने में पीछे की ओर लात मारकर गिरा हुआ था। वह कहता है, हाँ, वह अपने विमान पर है। तो फिर मैंने कहा, आप उसे कैसे जानते हैं? मैंने कहा, आपने विमान की सूची में सभी लोगों को क्या याद किया या कुछ और? और मैं बस उस लड़के के साथ मजाक कर रहा था क्योंकि मैं इसे हल्के में लेना चाहता था क्योंकि यह वास्तव में गंभीर था। वह आदमी कहता है, नहीं नहीं, वह कहता है, मैं केवल उन लोगों के नाम जानता हूं जो आग्नेयास्त्र ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं अभी पीछे हट गया। क्या उसने इससे बाहर निकलने के लिए बात की? जाहिरा तौर पर उसने इससे बाहर निकलने के लिए बात की और उस व्यक्ति ने उसे छुट्टी दे दी। उन्होंने इलियट को रिपोर्ट नहीं किया क्योंकि अन्यथा यह वास्तव में गंभीर होता। तो सवाल, एक अभिभावक के रूप में मैं जानता हूं कि दोबारा ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आए पवित्रता प्रतिक्रियाएं, पाप से निर्मलता, 37:55-39:01। तो ईश्वर का भय और खौफ है। यशाया परमेश्वर के सामने खड़ा है और परमेश्वर स्वर्ग में है और ये स्वर्गदूत परमेश्वर के चारों ओर घूम रहे हैं और कह रहे हैं, क्या पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। यशाया एक पवित्र ईश्वर की ओर देखता है। इन सेराफिम करूब प्रकार के प्राणियों को छह पंखों के साथ घूमते हुए और पवित्र 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 कहते हुए देखता है और क्या होता है। यशाया क्या महसूस करता है? मैं किस चीज का आदमी हूं? अशुद्ध होठों वाले लोगों के बीच में रहो। वह पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति के सामने अपनी शर्मिंदगी महसूस करता है। परंतु स्वर्गदूत तब गर्म कोयला लेता है और उसे उसके होठों पर रखता है और जलाकर उसे शुद्ध करता है और कहता है, यशाया तुम मेरे आदमी हो। यह यशायाह 6 है। यह यशायाह की पुकार है जहां स्वर्गदूत कहता है और भगवान मूल रूप से आते हैं और यशायाह से कहते हैं, आप इस पवित्र भगवान के लिए बोलने जा रहे हैं जिसे आपने देखा था। आप एक भविष्यवक्ता बनने जा रहे हैं यशायाह, और आप परमेश्वर का वचन बोलने जा रहे हैं। इसलिए यशायाह की बहुत सारी किताबें पवित्रता के बारे में हैं, क्योंकि यशायाह ने परमेश्वर को उसकी पवित्रता में देखा और फिर अपनी पवित्रता के साथ अपने और परमेश्वर के बीच इस तनाव को महसूस किया। जे पवित्रता एक विशेष लोगों के चयन की ओर बढ़ती है 39:02-39:54। तब परमेश्वर की पवित्रता, वह पवित्र है, वह विशेष है, वह अद्वितीय है। वह लोगों को चुनने और पवित्र बनाने के लिए आगे बढ़ता है। इसलिए परमेश्वर की पवित्रता उसे लोगों का चयन करने के लिए प्रेरित करती है, और वह यहाँ निर्गमन 19:6 में कहता है, तू मेरे लिए याजकों का एक राज्य होगा, संपूर्ण राष्ट्र याजकों का एक राज्य और एक पवित्र राष्ट्र होगा। पृथ्वी की सारी जातियों में से इसराइल विशेष था, इसराइल अद्वितीय था, इसराइल अलग था और परमेश्वर के लिए विशेष था। एक पवित्र राष्ट्र जो पृथ्वी के अन्य सभी राष्ट्रों से अलग है। यह उस राष्ट्र के माध्यम से है कि भगवान अपने पुत्र को भेजेंगे। इसलिए परमेश्वर की पवित्रता लोगों को चुनने और पवित्र बनाने के लिए आगे बढ़ती है। के चीजों को पवित्र बनाना, शबात 39:55-42:03। अब क्या हम कुछ पवित्र बना सकते हैं? अब यह थोड़ा अजीब है, लेकिन बस मेरा अनुसरण करें। क्या हम कुछ पवित्र बना सकते हैं? उत्तर है हाँ। याद रखें कि 10 आज्ञाएं हमें बताती हैं सप्त के दिन को याद रखें क्या करना है। इसे पवित्र बनाए रखने के लिए सप्त का दिन कैसे पवित्र था? क्या सप्त का दिन एक विशेष दिन है? क्या हमें इस सप्त के दिन को विशेष बनाने के लिए इसका आदर करना चाहिए? हम सप्त के दिन क्या नहीं करते? काम? आप पुराने नियम के यहूदी व्यक्ति हैं। तुम सप्त के दिन काम नहीं करते। वैसे सप्त कब है? यहूदी लोगों के लिए यह शनिवार है। सब्बात कब प्रारंभ होता है? शुक्रवार की रात जब सूरज डूब गया। अधिकांश यहूदी परिवार जब सूरज ढल जाता है तो यहूदी परिवार एक परिवार के रूप में शबात का रात्रिभोज करेंगे और तभी वे इसे एक परिवार के रूप में मनाएंगे। वे आम तौर पर शुक्रवार रात को शबात रात्रिभोज करते हैं जब सूरज ढल जाता है और परिवार रात्रि भोजन करता है। वे इसे शब्बत डिनर कहते हैं। सप्त का दिन कब समाप्त होता है? यह शुक्रवार की रात से शुरू होता है जब सूरज डूब जाता है और यह कब तक चलता है? शनिवार की रात सूर्यास्त हो गया। यहूदी लोग शनिवार की रात सूरज डूबने के बाद क्या करते हैं? वे पार्टी करते हैं। सूरज डूब जाता है, शाबात खत्म हो जाती है। शनिवार की रात सूरज ढल गया और हर कोई सड़कों पर निकल आया। यदि आप कभी यरूशलेम में हो तो आपको किकर सियोन स्क्वायर अवश्य जाना चाहिए, और आप हर जगह 10,000 कम से कम 10,000 यहूदी लोगों को झुंड में देखेंगे। हर कोई अच्छा समय बिता रहा है, और वे सड़कों पर नाच रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं और मौजमस्ती कर रहे हैं। और यह किकर सियोन पर है, वे इसे सियोन स्क्वायर कहते हैं। तो वैसे भी वह सप्त का दिन है, इसलिए सब्बात आप शनिवार की रात काम न करें। जब सूरज डूब जाता है, तेजी आती है, फिर ढक्कन बंद हो जाता है और वे मौजमस्ती करते हैं। एल पवित्रीकरण और पवित्रता 42:04-43:35। अब आप किसी चीज को पवित्र कर सकते हैं। क्या कोई लैटिन भाषा करता है? इसके पहले भाग में क्या आप इस शब्द सैंक्टी को देखते हैं? दूसरा सैंक्टी शब्द क्या है जो आप जानते हैं? सैंक्टी पवित्र के लिए लैटिन शब्द है। दूसरी पवित्रता क्या है जो आप जानते हैं? अभयारण्य। यदि मैंने अभयारण्य कहा तो क्या अभयारण्य एक पवित्र स्थान है जहां हम पूजा करने जाते हैं? वैसे मुझे बस इतना ही कहना चाहिए, पक्षी अभयारण्य के बारे में क्या? क्या आपने कभी किसी पक्षी अभयारण्य के बारे में सुना है? क्या पक्षी अभयारण्य वह स्थान है जो पक्षियों के लिए विशेष है? हाँ, तो उस मामले में अभयारण्य का विचार पक्षियों के लिए कुछ विशेष स्थान है। छात्र एक प्रश्न पूछता है, यहूदी लोग इसे शनिवार को करते हैं क्योंकि वह सातवां दिन है। इसे रविवार की तरह मूल रूप से आरंभिक ईसाइयों द्वारा वास्तव में सब्बात मनाने के कारण स्थानांतरित किया गया क्योंकि वे यहूदी थे। सभी प्रेरित यहूदी थे, यीशु यहूदी थे। वे सब्बात मनाते हैं, जब यीशु मृतकों में से उठे तो उन्होंने सातवें दिन का जश्न मनाना शुरू कर दिया, जो सप्ताह के पहले दिन रविवार को ईसा मसीह के पुनरुत्थान का जश्न मनाने का विशेष दिन था। संभवतः यहूदी लोगों और ईसाई लोगों के बीच भी कुछ तनाव था और पुनरुत्थान के कारण बड़े पैमाने पर उन्होंने इसे रविवार तक स्थानांतरित कर दिया। कुछ लोग शनिवार और रविवार दोनों दिन मनाते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर पुनरुत्थान, क्योंकि पुनरुत्थान रविवार को था, चर्च ने यीशु के पुनरुत्थान का जश्न मनाने के लिए हमारे विशेष दिन को स्थानांतरित कर दिया। अच्छा प्रश्न। एम पवित्र तेल 43:36-46:40। इसलिए किसी चीज को पवित्र करने का अर्थ है उसे अलग करना, इसे किसी विशेष चीज के रूप में अलग करना और पवित्र बनाने के लिए ये विशेष चीजें हैं। आप किसी चीज को पवित्र कैसे बनाते हैं? किस प्रकार की चीजें पवित्र हो सकती हैं? वहां पवित्र तेल है। अब जब बाइबल तेल कहती है तो इसका मतलब किस प्रकार का तेल है? मैंने एक बार एक उपदेशक को उठते हुए यह कहते हुए सुना, आशेर अपना पैर तेल में डुबोएगा, और इसका मतलब है कि आशेर जनजाति के नीचे तेल है और उन्हें तेल के लिए ड्रिल करने की आवश्यकता है क्योंकि बाइबल कहती है कि वहां नीचे तेल है। यह कहता है आशेर अपना पैर तेल में डुबाएगा, क्या वह पूरी तरह से फर्जी है? बिल्कुल बिल्कुल पागल। जब भी बाइबल तेल का उल्लेख करती है तो इसका तात्पर्य 10 से 20 या 10 से 30 वजन वाले कार तेल से नहीं है। यह जैतून के तेल के बारे में बात कर रहा है। वे सब कुछ जैतून के तेल से करते हैं। वे जैतून के तेल से खाना पकाते हैं। वे जैतून लेते हैं, उन्हें दबाते हैं, इससे जैतून का तेल बनता है। वे वहां सब कुछ जैतून के तेल से करते हैं। वैसे यह ब्रेड पर बहुत अच्छा लगता है। तेल एक पवित्र पदार्थ है। वे तेल के साथ क्या करते हैं? किसी को तेल लगाते हैं, अर्थात किसी के सिर में तेल डालते हैं। हम उसे क्या कहते हैं? अभिषेक। अब तेल के इस पवित्र पदार्थ को लेने और किसी को पवित्र घोषित करने के लिए हिब्रू शब्द क्या है? तेल लेकर किसी के सिर पर डालने की उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि हम इसे अभिषेक कहते हैं, लेकिन इसके लिए हिब्रू शब्द क्या है? यह तो आप सब जानते हैं। मैं यह कहूंगा, इसे मसीहा कहा जाता है। तुम किसी को तेल लगाते हो, आप उनका मसीहा बने। क्या आप शब्द सुन सकते हैं? यह मसीहा शब्द है। शब्द मसीहा वास्तव में आता है, मसीहा तेल से सना हुआ है। तो उदाहरण के लिए, उस संस्कृति में तेल किसको लगाया जाता था? क्या याजकों को तेल लगाया जाएगा या तेल से अभिषेक किया जाएगा? क्या राजा होंगे? क्या किसी को शाऊल याद है? आपने अभी तक वह भाग नहीं पढ़ा है, लेकिन शाऊल और दाऊद का इसराइल के राजा के रूप में तेल से अभिषेक किया गया था। तो राजाओं का अभिषेक किया जाएगा। तो मसीहा तेल से सना हुआ है। तेल से सना हुआ नया नियम में कैसे आता है? नया नियम ग्रीक में है। क्या आप जानते हैं कि तेल से सना हुआ के लिए ग्रीक शब्द क्या है? क्रिस्टोस, क्या कोई इसे सुनता है? यीशु, क्या? यीशु मसीह। आपने सोचा कि यह उसका अंतिम नाम था? नहीं, जीसस क्राइस्ट उनका अंतिम नाम नहीं है। यीशु, क्या? यीशु अभिषिक्त व्यक्ति। यीशु मसीहा तेल लगा हुआ। इसलिए जैतून के तेल का उपयोग किया जाता है। जब आप किसी चीज को पवित्र बनाना चाहते हैं, तो आप उसका तेल से अभिषेक करते हैं। तो तेल यह विशेष पदार्थ है। एन पवित्र धूप 46, 41, 46, 57। धूप एक और चीज है जो वास्तव में बहुत पवित्र है। वे वास्तव में पवित्र संदर्भ में धूप जलाएंगे और सुगंध हवा में भर जाएगी और एक विशेष पवित्र धूप होगी। तो ये दो चीजें हैं जिन्हें विभिन्न संदर्भों में पवित्र माना गया था। वो पवित्र स्थान 46, 58, 51, 35। अब वहां पवित्र स्थान है। तुम्हें याद है, मूसा ऊपर जाता है, उसने इस झाड़ी को जलते हुए देखा, तो मूसा कहता है, वाह, उस ओर देखो, यह झाड़ी वहां दिन के उजाले को जला रही है। वह ऊपर आता है और कहता है, झाड़ी नहीं जल रही है। तो वह ऊपर चलता है, वह देखता है, और अचानक जब वह एक कदम आगे बढ़ाता है, तो क्या होता है? झाड़ी क्या कहती है? मिशन पूरा हुआ। झाड़ी कहती है, अपने जूते उतारो। आप पवित्र भूमि पर हैं, तो क्या वह स्थान पवित्र था? वह स्थान पवित्र क्यों था? वहां एक झाड़ी में आग लगी हुई थी। वह स्थान पवित्र क्यों था? यह एक विशेष स्थान था क्योंकि वहां परमेश्वर की उपस्थिति थी। मूसा निकट आता है और उसके दृष्टिकोण में समस्या क्या है? आप बहुत करीब आ रहे हैं। अपने जूते उतार। यह पवित्र भूमि है। क्या आज तक भी कुछ धर्म अपने जूते उतारकर अपनी पवित्रता की भावना व्यक्त करते हैं? तो यह वहां की पवित्र भूमि है। परम पवित्र। अब इसका क्या मतलब है, पवित्रतम? यदि मैंने आपसे गीतों का गीत कहा, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? सुलेमान का गीत, लेकिन इसे गीतों का गीत कहा जाता है। जब यहूदी लोग बहुवचन में गीतों का गीत कहते हैं, तो उनका मतलब यह होता है कि यह अब तक का सबसे अच्छा गीत है। यह उनके लिए अतिशयोक्ति करने का एक तरीका है। गीतों का गीत यानी सर्वोत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ गीत। तो जब वे परमपवित्र स्थान कहते हैं, तो इसका क्या अर्थ है? यह परम पवित्र स्थान है। जैसे वह गाना अब तक का सबसे अच्छा गाना है, वैसे ही यह अब तक का सबसे पवित्र स्थान है। पवित्र स्थान सबसे पवित्र स्थान है। तो यह उनके लिए सबसे अच्छा, सबसे पवित्र या सबसे पवित्र कहने का एक तरीका है। जैसे हम किसी शब्द को सबसे बनाने के लिए उसके अंत में EST का प्रयोग करेंगे। प्रभु अपने पवित्र मंदिर में है। सारी प्रियवी उसके सामने शांत रहे, प्रभु अपने पवित्र मंदिर में है। मंदिर पवित्र क्यों है? क्योंकि उसकी मौजूदगी वहां है। तब उसकी उपस्थिति उस स्थान को पवित्र बनाती है। मुझे बस वही बताना चाहिए जो उसने अभी कहा। यह बिल्कुल सही है। प्रायश्चित के दिन वर्ष में एक बार वे परम पवित्र स्थान में जाते थे। वे इतने भयभीत थे कि महायाजक को कुछ हो जाएगा। वे मूल रूप से उसके चारों ओर एक रस्सी बांध देते थे और फिर एक घंटी। और यदि वह नीचे गया तो ठीक है, समस्या यह है वे नीचे गए क्योंकि वे शुद्ध नहीं थे। अन्य पुजारी अंदर जाते हैं और उनके साथ क्या होता है? वे भी नीचे जाते हैं। इसलिए समस्या से बचने के लिए उन्होंने उस पर रस्सी डाल दी ताकि अगर वह नीचे जाए तो वे उसे बाहर खींच सकें। तो वह परमपवित्र तंबू के लिए होगा। अब हमारे पास अब तक यहाँ क्या है? हमारे पास मिलाप वाले तंबू में परमपवित्र स्थान है, तंबू जहाँ वे इस तंबू में रहते हैं जिसे हमने देखा है। आखिरकार पवित्रतम मंदिर में निवास करने आएगा और आप उसे मंदिर के पर्दे के पीछे पाएंगे। वैसे आप सभी ने कहा पवित्र पर्वत कौन सा है? उस पर्वत का क्या नाम है जिसे परमेश्वर मेरा पवित्र पर्वत कहते हैं? वह कौन सा पर्वत है? सियोन पर्वत। क्या कभी किसी ने इसके बारे में सुना है? सियोन पर्वत यरूशलेम में है, मंदिर पर्वत। परमेश्वर इसे मेरा पवित्र पर्वत कहते हैं। वैसे मुझे एक और काम करने दीजिए, बस मेरे दिमाग से। क्या आप लोगों को माउंट सिनाई याद है? आप लोगों ने निर्गमन 32 पढ़ा है। हिलता हुआ पहाड़ याद है? पहाड़ पर भगवान की उपस्थिति थी। क्या परमेश्वर के लोगों को उस पर्वत पर जाने की अनुमति थी या उनसे कहा गया था कि वे वहां से दूर रहें? सारा पर्वत पवित्र हो गया। भगवान की उपस्थिति वहां थी। मूसा को ऊपर जाना है। लोग पहाड़ से दूर रहते हैं। जानवरों को भी पर्वत से दूर रहना था। अथ किसी स्थान पर ईश्वर की उपस्थिति उसे पवित्र बनाती है। क्या आप में से कुछ लोगों ने ऐसे स्थानों का अनुभव किया है जो आपके लिए विशेष स्थान हैं, जहां आप भगवान से मिले हैं? वे विशेष स्थान हैं। मैं उन पवित्र स्थानों को बुलाना चाहता हूं। वे विशेष स्थान हैं जहां आप भगवान से मिले हैं। अलग अलग स्थान और अलग अलग चीजें पवित्र हैं। पवित्र दिन होली दिन 51, 36, 53, 08। फिर यहां कुछ अन्य चीजें हैं जो पवित्र हैं। यदि आप इस व्रत को 3 बार कहते हैं तो आपको क्या मिलता है? पवित्र दिन क्या बन जाते हैं? छुट्टियां। इसे ही हम छुट्टियां कहते हैं। वाय को आय में बदल दिया जाता है। वैसे वाय को आय में बदलना भाषाई रूप से कोई बड़ी बात नहीं है। यह हमारी छुट्टियां हैं। पवित्र दिन। पवित्र दिन कौन सा है? यह सप्त का दिन है। जैसा कि हमने कहा, सप्त का दिन वे शुक्रवार की रात को मनाते हैं जो सप्त के दिन से शुरू होता है। वे पारिवारिक रात्रि भोज करते हैं और फिर बिना किसी काम के सप्त का दिन मनाते हैं। फिर शनिवार की रात को सप्त का दिन समाप्त होता है। बाइबल कहती है सप्त के दिन को स्मरण रखो और उसे पवित्र रखो, इसलिए सब्बात एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। यहूदियों के पास दावतों की एक श्रृंखला होगी। और वैसे क्या दावतों को लेविटिकस में सूचीबद्ध किया जाएगा? क्या पर्व याजकों के लिए महत्वपूर्ण होंगे? क्या याजकों को दावतों में कार्य करना पड़ता है? हाँ, इसलिए लेव्य व्यवस्था की पुस्तक में पर्वों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा क्योंकि याजक और लेवीय इन पर्वों में कार्य करते हैं। वह लेव्य व्यवस्था अध्याय 23 होगा। इसलिए ये पवित्र दिन हैं। विशेष समय होते हैं। क्या आज कोई पवित्र समय है? क्या आप में से कुछ लोगों के पास विशेष समय होता है जब आप भगवान से मिलते हैं? इसलिए मैं समय कह रहा हूं और फिर हमने अंतरिक्ष की ओर देखा। इसलिए ईश्वर की उपस्थिति में समय और स्थान का अनुभव होता है और वह समय और वह स्थान पवित्र हो जाता है। प्रपवित्रता का उल्लंघन नादाब और अबीहू 53:09-54:49। अब जब पवित्र चीजों का उल्लंघन किया जाता है तो क्या होता है? क्या आपको ये दो लोग याद हैं, नदाब और अबीहू? वे किसके बच्चे थे? हाँ, ये हारून के दो बेटे हैं। क्या उन्होंने लेव्य व्यवस्था अध्याय 10 में प्रभु के सामने अंधिकृत अग्नि अर्पित की थी? उनका क्या होता है? वे भस्म हो जाते हैं और वे नष्ट हो जाते हैं। तो ये दो लोग हारून के बच्चे एक अंधिकृत आग की पेशकश करते हैं। वे प्रभु की उपस्थिति में मारे गए हैं। वे परमेश्वर की पवित्रता का उल्लंघन करते हैं और परमेश्वर की पवित्रता उन्हें भस्म कर देती है। वैसे क्या आपको लगता है कि इससे हारून पर बहुत असर पड़ा? जब हारून वहां जाता है तो क्या आपको लगता है कि हारून यह कहते हुए वहां उछल रहा था, अरे मैं महायाजक हूं, इसलिए इन बच्चों को नहीं पता था कि वे क्या कर रहे थे, तो मैं अब यहां हूं? क्या आपको लगता है कि हारून ऐसे ही अंदर गया? या फिर हारून कहेगा, बुआ तो क्या आप दृष्टिकोण में बदलाव देखते हैं जो घटित हुआ होगा? ये हारून के बच्चे भी थे। हमारी संस्कृति में क्या हमें हमेशा दूसरा मौका मिलता है? परिणाम वास्तव में हम पर कभी नहीं आते क्योंकि कोई न कोई हमें बचाने आएगा। इसलिए इसका परिणाम बिना किसी दूसरे अवसर के इन बच्चों पर पड़ता है। मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत है। परिणाम घटित होते हैं। ईश्वर हमेशा लंबी पीड़ा में अनुग्रह और करुणा के साथ आगे नहीं बढ़ता है। इसका मतलब है कि किसी भी चीज का कोई परिणाम नहीं होता है। लेविटिकस अध्याय 10 में नादाब और अबीहू के साथ यह बहुत मजबूत है। आर भगवान की पवित्रता का उल्लंघन उज्जाह 54:50-56:51। यहां एक और है जो कठिन भी है। यह दाऊद राजा दाऊद के लिए कठिन था। डेविड यहां क्या कर रहा था? इस लड़के का नाम उज्जाह है। परमेश्वर का संदूक पलिश्तियों के पास था। परमेश्वर का संदूक पलिश्तियों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा था। पलिश्ती मारे जा रहे थे, इसलिए वे कहते हैं, हमें यह संदूक यहूदियों को लौटा देना है। आथ संदूक वापस यहूदी क्षेत्र में आ जाता है। डेविड फिर यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाता है और वह परमेश्वर के संदूक को अपनी राजनीतिक राजधानी तक लाना चाहता है। तो फिर यरूशलेम धार्मिक राजधानी के साथ साथ राजनीतिक राजधानी भी होगी। अत दाऊद ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। पहले इसका स्वामित्व यबूसियों के पास था। दाऊद ने ही यरूशलेम पर कब्जा किया था और इसीलिए इसे दाऊद का शहर कहा जाता है। इसलिए दाऊद अब संदूक को यरूशलेम तक लाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने इसे एक गाड़ी पर रख दिया। गाड़ी ऊपर जा रही है। यह न्यू इंग्लैंड की तरह है, हर जगह चट्टाने हैं। तो क्या होता है कि गाड़ी एक चट्टान से टकराती है और जहाज इस गाड़ी से उड़ जाएगा। उज्जा क्या करता है? उज्जा ने संदूक को स्थिर करने के लिए अपने हाथ बढ़ाए। वह संदूक को छूता है। जब आप संदूक को छूते हैं तो क्या समस्या है? बूम, वह मर चुका है। आप सभी लोग इसे इंडियाना जोन्स से जानते हैं। आप जहाज खोलते हैं और क्या होता है? सबका चेहरा उतर जाता है। वैसे क्या इससे डेविड डर गया? डेविड ने क्या कहा? दाऊद संदूक को यरूशलेम तक ले जा रहा था, अचानक उज्जा की मृत्यु हो गई और उसने इसे पेरेस उज्जा कहा, उज्जा पर टूट पड़ा। डेविड कहते हैं, वाह, संदूक वहीं रखो। डेविड उस समय संदूक नहीं लाया, लेकिन बाद में लाएगा। अगली बार जब वे उसे ऊपर लाते हैं, तो वे उसे याजकों के कंधों पर उठाते हैं और यरूशलेम तक पूरे रास्ते में हर 7 कदम पर बलिदान चढ़ाते हैं। फिर डेविड अपनी पूरी ताकत के साथ प्रभु के सामने नाचता है। हम उस पर बाद में चर्चा करेंगे। परंतु यहोवा के संदूक को यरूशलेम में लाने से उज्जा ने परमेश्वर की पवित्रता का उल्लंघन किया और वह मर गया। इस पवित्रता का उल्लंघन राजा उज्जियाह 56:52-59। यहाँ एक ऐसा है जिसके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। यह 2 इतिहास 26 से राजा उज्जियाह है। उज्जियाह सोच रहा था कि वह बहुत बड़ा आदमी है, तो उज्जियाह राजा है और वह सबको दिखाने जा रहा है कि वह बड़ा राजा है। वह कहता है, अरे मैं स्वयं धूप चढ़ाने जा रहा हूं, मुझे किसी पुजारी की जरूरत नहीं है, मैं इसे स्वयं करने जा सकता हूं। याजक कहते हैं, उज्जियाह ऐसा मत करो, उज्जियाह ऐसा मत करो, पीछे हटो उज्जियाह। उज्जियाह कहता है, मैं राजा हूं, मैं वहां जा रहा हूं। वह वहां जाता है और धूप जलाने जाता है, और उसके हाथ का क्या होता है? अचानक सशूम उस आदमी को कुष्ठ रोग हो जाता है और वह कुष्ठ रोग से घिर जाता है। वैसे जब आपको कुष्ठ रोग हो जाता है तो आप शुद्ध होते हैं या अशुद्ध? अशुद्ध, तो अचानक पुजारी उसे वहां से भगा देते हैं। वैसे फिर भी उज्जियाह को शेष जीवन के लिए कुष्ठ रोग है और वह फिर से उस पवित्र स्थान का उल्लंघन करने के कारण अपने शेष जीवन के लिए कोढ़ी के रूप में रहता है। तो ये उस पवित्रता का उल्लंघन करने वाले लोगों के 3 उदाहरण हैं, और आप देख सकते हैं कि आपको वहां किस तरह की प्रतिक्रिया मिलती है। ती पवित्र चीजों को पवित्र करना 58:00-59:37। अब चीजें कैसे पवित्र की जाती हैं? चीजें निर्दिष्ट हैं या जिसे वे पवित्र कहते हैं। सैंक्टी पवित्र के लिए लैटिन शब्द है। सैंक्टी लैटिन शब्द है, जैसा कि अभयारण्य में देखा जाता है। क्या कभी किसी ने पवित्रीकरण के अध्ययन के बारे में सुना है? पवित्रीकरण का अध्ययन क्या है? पवित्र बनाए जाने का अध्ययन। वैसे क्या कोई होलीनेस मूवमेंट में है? मेरे समय में उनके पास होली रोलर्स हुआ करते थे। तो आप मूल रूप से किसी विशेष उद्देश्य के लिए कुछ अलग रखते हैं। आप इसे पवित्र करते हैं, आप इसे नामित करते हैं, कई बार तेल से। ट्रांसमिशन कैसे होता है? संचरण आमतौर पर स्पर्श के माध्यम से होता है। आप किसी का तेल से अभिषेक करें। क्या कभी किसी ने हाथ रखना मुहावरा सुना है? जब आप अपने चर्च या मिशनरी में किसी मंत्री या बुजुर्ग को नामित कर रहे हैं, तो क्या आप में से किसी ने किसी मिशनरी के साथ ऐसा किया है? वे ऊपर आते हैं और वे तुम पर हाथ रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि स्पर्श के माध्यम से हाथ रखकर आप इस व्यक्ति को एक विशेष व्यक्ति के रूप में नामित कर रहे हैं, जो एक विशेष स्थान पर मिशनरी बनने जा रहा है। आप उस व्यक्ति को विशेष उस उद्देश्य के प्रति समर्पित व्यक्ति के रूप में नामित करते हैं। तो आमतौर पर यह स्पर्श के माध्यम से होता है, और आमतौर पर यह तेल के माध्यम से होता है। पवित्रता आमतौर पर स्पर्श और तेल से अभिषेक की जाती है। आप व्यक्ति का अभिषेक करते हैं, आप वेदी को छूते हैं और वेदी पवित्र होती है। यू यीशु और पवित्रता 59:38-62:59। अब यहाँ 9:20 में यीशु के साथ एक बहुत अच्छी कहानी है, और यह कुछ अन्य सुसमाचारों में भी होती है। यीशु एक भीड़ के बीच से चल रहे हैं। ये सारी भीड़ हर समय यीशु के आसपास रहती है। मुझे खिलाओ, मुझे खिलाओ। वैसे भी ये सारी भीड़ यीशु के आसपास है। प्रश्न, जब आपके पास ऐसी भीड़ होती है तो क्या लोग लोगों को धक्का देते हैं? तुम्हें पता है लोगों को छूना। मेरा मतलब है, हम वहां सेल्टिक्स में एक बास्केटबॉल खेल के लिए गए थे और लोग वहां से दौड़ते हुए आए। वहां एक आदमी था जो बाहर आया। प्रश्न, क्या हर कोई उसे छूने की कोशिश कर रहा था? हर कोई उसे छूने की कोशिश कर रहा था। ये हाथ उसे छू गया। मेरे हाथ पर माइकल जॉर्डन का पसीना था। मैं उसे कभी नहीं धोऊंगा। यह खरी सच्चाई है। मैंने किया। मेरे बेटे ने मुझसे यह करवाया, लेकिन फिर भी वह वहां गया, तो हमने माइकल किया। मैंने उसे ढूंढ लिया। माइकल जॉर्डन, मैं वह हाथ दोबारा कभी नहीं धोऊंगा। वह हाथ जरूर धोएं। हर कोई यीशु पर दबाव डाल रहा है। यीशु भीड़ में रुकते हैं और कहते हैं, अरे मुझे किसने छुआ? मुझे किसने छुआ? शिष्य कहते हैं, आओ यीशु, आपके यहां ये सभी लोग मौजूद हैं। किसने मुझे छुआ? आप जानते हैं, यीशु हैं, मुझे किसने छुआ? वहां सैकड़ों लोग आपको धक्का दे रहे हैं और आपको छू रहे हैं, लेकिन यीशु कहते हैं, नहीं, किसी ने मुझे छुआ। अब प्रश्न, आप शिष्यों को देख सकते हैं, कभी कभी वे उस व्यक्ति को समझ नहीं पाते थे, तो वह पलट जाता है। किसी ने उसे छुआ, कुछ हुआ क्या? कुछ हुआ। वह मुड़ता है और उसके पीछे एक महिला है। महिला को खून की समस्या हो गई। अब आपने लेविटिकस पढ़ लिया है। वहां एक महिला है जिसे खून की समस्या है। प्रश्न, वह शुद्ध है या अशुद्ध? वह अशुद्ध है। क्या होता है जब किसी को कुष्ठ रोग होता है? कोई अशुद्ध होता है, किसी स्वच्छ व्यक्ति को छूता है। जो व्यक्ति साफ रहता है उसका क्या होता है? तुम्हें कोढ़ हो गया है और तुम शुद्ध मनुष्य को छूते हो। जब अशुद्ध शुद्ध को छूता है तो शुद्ध का क्या होता है? स्वच्छ अस्वच्छ हो जाता है। यीशु का क्या होगा? स्त्री यीशु को छूती है। क्या यीशु अशुद्ध हो गए? नहीं, इसका उल्टा असर होता है। स्त्री निर्मल हो जाती है। वह ठीक हो गई है। क्या वह अच्छा है? क्या यह पूरी तरह से लैव्य व्यवस्था का उल्लंघन है? क्या लैविकुस का सारा सामान वहां अशुद्ध है? वह अशुद्ध है। वह यीशु को छूती है। अकस्मात वह ठीक हो गई है। सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। तो आपको लेविटिकस और जीसस के साथ घटित होने वाली यह वास्तव में अच्छी चीज मिलती है। किसने मुझे छुआ? खैर हाँ, उसे मारा जा सकता था। क्या यीशु के पवित्र होने से यह संभव है? मेरा अनुमान है कि यीशु को भीड़ में हर कोई धक्का दे रहा था, इसलिए शायद यह प्राथमिकता सूची में उतना ऊपर नहीं था और वह उम्मीद कर रही थी कि यीशु उसे ठीक कर देंगे, और वास्तव में वही हुआ। जब आप ऐसे हैं तो शायद यह जोखिम उठाने लायक है। तो यह यीशु और लैव्य व्यवस्था और उस कहानी की पृष्ठभूमि के साथ एक सुंदर कहानी है। वी लेविटिकस का सारांश चार्ट, अशुद्ध स्वच्छ पवित्र, 63-00-66-44। अब वास्तव में इससे पहले कि हम ऐसा करें, यह अगला चार्ट, मुझे यह अगला चार्ट बहुत पसंद है। पावर पॉइंट में हम जो कुछ भी करते हैं उनमें से यह मेरा पसंदीदा चार्ट है। यह मेरा पसंदीदा है। इस एक चार्ट में लेविटिकस की पूरी किताब है। मैं कभी नहीं भूलूंगा, मैं लेविटिकस पर यह पूरा पाठ्यक्रम पढ़ा रहा था और मैंने गॉर्डन वेनहम और लेविटस पर उनकी टिप्पणी से यह चार्ट चुरा लिया। जब मैंने चार्ट देखा तो ऐसा लगा जैसे लेविकस की पूरी किताब मेरे दिमाग में घूम गई हो। इस एक चार्ट में लेविटिकस की पूरी किताब मौजूद है। इसे बढ़ा चढ़ाकर बताने के लिए क्षमा करें, लेकिन यह लेविटिकस की पूरी पुस्तक की व्याख्या करता है। यह अतिशयोक्ति है, अतिशयोक्ति है। आपकी तीन अलग अलग अवस्थाएं हैं। आपके पास पवित्र होने की स्थिति है, आपके पास स्वच्छ होने की स्थिति है, और आपके पास अशुद्ध होने की स्थिति है। जिस महिला को खून की समस्या थी वह क्या थी? वह अशुद्ध थी। आप स्वच्छ हो गए हैं और फिर आप पवित्र हो गए हैं। अब लेविटिकस की अधिकांश पुस्तक में क्या यह आपको बताता है कि कौन अशुद्ध है? यदि किसी स्त्री का बच्चा हो तो वह बच्चा पैदा करने के बाद 30 दिन तक अशुद्ध रहती है और उसे शुद्धिकरण की आवश्यकता होती है। एक आदमी कुछ चीजें करता है और वह ऐसी चीजें छूता है जो उसे नहीं छूनी चाहिए क्योंकि वह अशुद्ध है। उसे धोना होगा। यदि आप अशुद्ध हैं तो आप कैसे साफ हो सकते हैं? यदि आप अशुद्ध हैं तो आप शुद्ध करें। सफाई के लिए आप किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? पानी। इसलिए अशुद्ध को शुद्ध करने के लिए आगे बढ़ने के लिए आप धो लें। यहूदियों के पास बहुत सारे समारोह होते हैं जहां वे अपने हाथ धोते हैं। वैसे क्या वह अच्छी स्वच्छता है? इसलिए वे अपने हाथ धो रहे हैं। दूसरा पदार्थ जो साफ तो कर सकता है लेकिन धोता नहीं, वह है खून। तो क्या आपको इस तरह ले जाकर बलिदान देना होगा? बलिदान के लिए बहाया गया खून। अत जल और रक्त शुद्ध हो जाते हैं और आप शुद्ध हो जाते हैं। अब आप स्वच्छ से पवित्र की ओर कैसे जाएंगे? स्वच्छ से आगे बढ़ने के लिए आप पवित्र करते हैं। पवित्रीकरण के लिए आमतौर पर किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? जैतून का तेल। आप आमतौर पर तेल, जैतून का तेल पवित्र करने, आमतौर पर अभिषेक और छूने के लिए उपयोग करते हैं। इसे पवित्र बनाया गया है। लेविकस की अधिकांश पुस्तक इसी आंदोलन के बारे में है। तो फिर क्या होता है जब कोई चीज पवित्र होती है और दूसरी दिशा में चली जाती है? जब कोई चीज पवित्र होती है तो आप उसे अपवित्र कर सकते हैं जो पवित्र है। आप उसे अपवित्र या अपवित्र कर सकते हैं जो पवित्र है और यह इस दिशा में जाता है। जब तुम्हारे पास कोई चीज शुद्ध होती है तो तुम उसे प्रदूषित करते हो और वह अशुद्ध हो जाती है। तो आप इस दिशा से नीचे जाते हुए दूसरे रास्ते पर आ जाएं। क्या लेविकस की अधिकांश पुस्तक आपको इन तीन अवस्थाओं और इन तीन अवस्थाओं के बीच की हलचल के बारे में बता रही है? हाँ, यह केवल एक चार्ट में लेविटिकस की पुस्तक की तरह है। छात्र प्रश्न पूछता है, हाँ, इसीलिए मैंने जो कहा उसे आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ा। जब आप यहाँ पवित्र पर प्रहार करते हैं और इसे अपवित्र करते हैं तो यह इस दिशा में आगे बढ़ता है। असल में यह सीधे सफाई की ओर नहीं बढ़ता है। जब आप अपवित्र चीजें करते हैं तो यह वास्तव में चार्ट से हट जाता है। यहाँ भी वही बात है, जब आप किसी स्वच्छ चीज को प्रदूषित करते हैं तो वह चार्ट से एकदम नीचे चली जाती है। इसलिए आपको सावधान रहना होगा। आने पर वे बहुत विशेष रूप से सामने आकर काम करते हैं, लेकिन वापस जाकर आप बिल्कुल सही हैं। ऐसा लगता है जैसे आप यहाँ फिसलन भरी ढलान पर हैं। अपवित्र बातें करना बुरा है। अच्छा अवलोकन। W पवित्रता कानून 66, 45, 68, 56। अब शुद्धता के नियमों के अनुसार स्वर अशुद्ध क्यों है? कैटफिश अशुद्ध क्यों है? जब मैं बड़ा हो रहा था तो हम कैटफिश खाते थे। क्या आप में से कोई हैम या बेकन खाता है? तो कैटफिश अशुद्ध क्यों है? एक महिला, अब यह थोड़ा पेचीदा है, प्रसव के बाद एक महिला अशुद्ध क्यों होती है? क्या प्रसव एक प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं है? क्या बच्चे का जन्म परमेश्वर को मंजूर नहीं है? प्रसव के बाद महिला को अशुद्ध क्यों माना जाता है? यहाँ एक और बात है, संबंध बनाने के बाद शादीशुदा जोड़े को अशुद्ध माना जाता है। क्या भगवान ने शुरू से ही ऐसा निर्धारित किया था? हाँ, एक आदमी और पत्नी को एक तन बनना है। लेकिन यहाँ तो शादीशुदा जोड़ा संबंध बनाने के बाद अशुद्ध हो जाता है। तो आप इस अस्वच्छता की बात के बारे में कैसे सोचते हैं? हम इसे कैसे समझें? क्या आप इन चीजों में अंतर देखते हैं? इसलिए मैं इसके लिए अलग अलग तर्क और इन शुद्धता कानूनों का पता लगाना चाहता हूँ। वैसे क्या यह वास्तव में हमारी संस्कृति के लिए विदेशी है? तो हम जो कर रहे हैं वह यह है कि हम दूसरी संस्कृति की ओर जा रहे हैं और हम 3000 साल पीछे जा रहे हैं। तो कुछ अर्थों में आपको चीजों के बारे में अमेरिकी सोच से बाहर निकलना होगा। उस समय वे चीजों के बारे में बहुत अलग तरीके से सोचते थे। यहाँ एक और प्रश्न है, विकृत हाथ वाले पुजारी को सेवा करने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? मेरा एक अच्छा मित्र फ्लॉयड वोटो है और वह मेरा लाइब्रेरियन मित्र है। उसका एक हाथ विकृत है। क्या उसे पुजारी के रूप में सेवा करने की अनुमति दी जाएगी? वह एक पुजारी के रूप में सेवा नहीं कर सका। यदि आप कहते हैं यह विकलांगों के प्रति भेदभाव है, आप लेविटिकस की पुस्तक के मुद्दे को पूरी तरह से भूल गए हैं। तो आप इन सभी चीजों का क्या मतलब निकालते हैं? तो वह अध्याय 21 श्लोक 5 और 17 और अन्य स्थान हैं। आइए अब मैं उससे निपटने का प्रयास करता हूँ। एक्स शुद्धता कानूनों की कथित व्याख्या पूरी तरह से मनमानी 68, 57, 69, 37। कुछ लोग कहते हैं कि ये शुद्धता कानून पूरी तरह से मनमाने हैं कि भगवान ने कहा ऐसा करो क्योंकि मैंने ऐसा कहा है। वैसे क्या आपके माता पिता ने कभी आपसे सिर्फ इसलिए कुछ करने के लिए कहा है क्योंकि मैंने ऐसा कहा था? क्या ईश्वर पूर्णतः मनमाना है? इसलिए यह आमतौर पर वास्तव में अच्छी तरह से काम नहीं करता है। ईश्वर पूरी तरह से मनमाना है जो उसके चरित्र या व्यवहार के सामान्य पैटर्न में फिट नहीं बैठता है। वह आमतौर पर किसी उद्देश्य के लिए काम करता है। इसलिए मुझे यह सबसे कमजोर तर्क लगता है। आपके साथ ईमानदार होने के लिए मैं इसे बाहर फेंक दूंगा। यह परमेश्वर के चरित्र से मेल नहीं खाता। वह लोगों से बिल्कुल मनमाने तरीके से काम करने के लिए नहीं कहता है। यह हमेशा उसके चरित्र, नियति, उद्देश्यों या लक्ष्यों से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। वाई सांस्कृतिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण 69, 36, 70, 49। यहाँ एक स्पष्टीकरण है, सांस्कृतिक या सांस्कृतिक? परमेश्वर क्या कह रहा है? अरे तुम लोग, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग कनानियों से भिन्न हो। कनानी जब वे वेदी बनाते हैं तो वे अपनी वेदियां किस चीज से बनाते हैं? कट स्टोन, पत्थर एक साथ फिट होते हैं और वे अपनी वेदियां तराशे हुए पत्थरों से बनाते हैं। परमेश्वर कहते हैं मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी वेदी उस प्रकार बनाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी वेदी बिना तराशे पत्थरों से बनाओ। अब वैसे जब हम 3000 साल पीछे जाते हैं तो क्या हम कनानी वेदी से यहूदी वेदी बता सकते हैं? हम तुरंत बता सकते हैं। कनानी वेदियां अराद नामक स्थान पर कटे हुए पत्थरों से बनाई गई हैं। उदाहरण के लिए आप कटे हुए पत्थर से बनी एक कनानी वेदी देखते हैं और यहूदी वेदियां बिना कटे पत्थर से बनी होती हैं, कम से कम उनमें से कुछ। यहूदियों ने वास्तव में कटे हुए पत्थर से कुछ बनाया था, जैसे बेर्शेबा। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था लेकिन उन्होंने ऐसा किया। तो दूसरे शब्दों में कनानी संस्कृति इसे इस तरह से करती है। भगवान कहते हैं मैं नहीं चाहता कि आप इसे इस तरह से करें। मैं चाहता हूं कि आप इसे अलग तरीके से करें ताकि आपकी संस्कृति और कनानी संस्कृति के बीच अंतर हो। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ कानूनों की व्याख्या संस्कृति में इस अंतर से की जाती है। तो यह कुछ चीजें समझाता है। कनानी संस्कृति और इजरायली संस्कृति के बीच संस्कृति में अंतर कुछ चीजों को जातीय मार्कर के रूप में समझाता प्रतीत होता है। जेड स्वच्छ दृश्य 70-50-73-34। अब यहाँ एक और है स्वच्छ। 1950 के दशक में मैकमिलन नाम का एक व्यक्ति था जिसने नन ऑफ दिस डिजीज नामक पुस्तक लिखी थी। वह एक मेडिकल डॉक्टर थे। उसने लेविटिकस की पुस्तक देखी और उसने पूछा, क्या यह स्वस्थ है? अब वैसे क्या यहूदी रोगाणुओं के बारे में कुछ भी जानते थे? यहूदियों को कीटाणुओं के बारे में कोई अंदाजा नहीं था, बिल्कुल अंदाजा नहीं था, यहां तक कि प्रारंभिक अमेरिका के लोग भी। क्या आपको याद है, क्या कभी कोई विलियम्सबर्ग गया है और कितने लोग केवल बुनियादी स्वास्थ्य चिंताओं के कारण मर गए? उन्हें कीटाणुओं के बारे में पता नहीं था और इसकी वजह से इन लोगों की मौत हो गई। तो क्या यहूदियों का हमेशा हाथ धोने का तरीका स्वास्थ्यकर है? क्या वह बहुत स्वस्थ है? आप सुअर का मांस नहीं खाते? उन दिनों क्या सुअर के मांस में ट्राइचिनोसिस होता था? अब वैसे जब आप लोग सुअर का मांस खाने जाते हैं तो क्या अब अमेरिका में सुअर के मांस में ट्राइकिनोसिस है? यह सब पैदा हो गया है। तो आप लोगों को इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब मैं पहले बड़ा हो रहा था तो आप सुअर के मांस को ज्यादा देर तक बाहर नहीं छोड़ते थे। क्या आप सुअर का मांस बिना पकाए खाएंगे? अब आज ट्राइकिनोसिस कोई समस्या नहीं है। दरअसल क्या कभी किसी ने देखा है, यह लड़का जिसने मेरी बेटी से शादी की है, वह कच्चा हैमबर्गर खाता है। क्या कभी किसी ने किसी को बिना पकाए हैमबर्गर खाते देखा है? वे हैम खाते हैं, कच्चा हैमबर्गर? हाँ, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूं। लड़का कच्चा हैमबर्गर खाता है। मुझे नहीं पता। मैंने सोचा कि यह सचमुच अजीब था। कृपया अपना हैमबर्गर पकाएं। लेकिन उस समय सुअर के मांस के साथ ट्राइकिनोसिस भी था। वैसे प्रसव के बाद महिला अशुद्ध रहती है। क्या प्रसव के बाद महिला को छुट्टी मिलनी चाहिए? उन्होंने ऐसा इसी तरह किया। प्रसव के बाद 33 दिनों तक एक महिला अशुद्ध रहती है और वैसे क्या यह उसके लिए स्वस्थ बात है? हाँ, यह है। इतने सारे नियम, मुझे बस एक और नियम करने दीजिए। इसके बारे में बैक्टीरिया के संदर्भ में सोचें। जब आपको अपना नंबर लेना था तो क्या आपको यहूदी शिविर के अंदर बाथरूम में जाने की इजाजत थी? नहीं, बाइबल कहती है कि जब आप इज़राइल के शिविर के अंदर होते हैं तो आपको एक समस्या होती है, आपको जाना होगा। मूल रूप से आपको शिविर के बाहर जाना होगा और आपको क्या करने के लिए अपने साथ एक चप्पू लाना होगा। तुम्हें इसे डेरे के बाहर गाड़ना होगा। इसे शिविर के बाहर दफनाना, क्या यह स्वस्थ है? क्योंकि यदि आपने इसे शिविर के अंदर किया तो क्या वहां सभी प्रकार की मक्खियां और बीमारियां होंगी? और भगवान कहते हैं, अरे नहीं नहीं नहीं, जब तुम अपना नंबर करो तो इसे शिविर के बाहर करो, इसे छावनी के बाहर गाड़ दो। क्या वह स्वस्थ है? मेरा मतलब है, हम आज भी ऐसा करते हैं। हम आज भी इसे सेप्टिक टैंक और ऐसी ही अन्य चीजें कहते हैं। तो मैकमिलन जो करता है वह करता है और कहता है कि इनमें से बहुत से नियम बिल्कुल स्वस्थ नियम हैं। क्या यह उन सभी को समझाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ए युक्कीनेस संपूर्णता दृश्य 73-35-79-32। मैं अब एक और प्रस्ताव रखने जा रहा हूं। यह वास्तव में मैरी डगलस नामक समाजशास्त्री द्वारा बनाया गया है। मैंने इसे एक तरह से अपना लिया है। लेकिन यह अगला जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, वह वास्तव में कुछ कठिन चीजों की व्याख्या करता है जिनका मैं पता नहीं लगा सकता और जिनके बारे में मुझे कोई सुराग नहीं है। इसे मैं यकीनेस व्यू कहना चाहता हूं। क्या प्रत्येक संस्कृति में वह है जो संस्कृति के भीतर स्वादिष्ट है? मेरी पत्नी के साथ एक अनुष्ठान पर वापस जाएं। मुझे हैमबर्गर पसंद हैं। मुझे ये केचप के साथ पसंद हैं। मुझे केचप बहुत पसंद है और इसलिए मैंने बर्गर के दोनों तरफ केचप लगाया। मैं इसमें कुरकुराता हूँ और फिर मुझे यह केचप चीज यहाँ मिलती है और फिर मैं अपनी पत्नी के पास जाता हूँ और कहता हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? मुझे एक किस चाहिए। मैं अपनी खूबसूरत दुल्हन को चूमना चाहता हूँ और मुझे केचप नीचे आ रहा है और मुझे पता है कि मुझे केचप नीचे आ रहा है और मैं देखना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? क्या तुम मुझे चूमोगे? बेशक वह ऐसा नहीं करेगी। मुझसे दूर हो जाओ। जाओ अपना मुंह पोंछो। प्रश्न: जब मैं उसके पास जाता हूँ और मेरे मुंह में केचप लटका हुआ होता है तो प्रश्न, क्या वह भाग्यशाली है? मुझे एक अलग उदाहरण का उपयोग करने दीजिए। वह एक बुरा उदाहरण था। मुझे एक अलग उदाहरण का उपयोग करने दीजिए। मैं ग्रेस कॉलेज नामक स्थान पर हूँ। दुनिया के दूसरे हिस्से से एक लड़की है। दुनिया के उस हिस्से में यह कोई मजाक नहीं है, वे मकड़ियां खाते हैं। तो वह छात्रावास में है और वहां एक मकड़ी है और वह उसे चट कर जाती है। प्रश्न: हाँ ठीक है। खराब? क्या हर कोई इसे देखता है? क्या वह उतावलापन ठीक है? अब वैसे क्या उसने इसे भाग्यशाली माना? नहीं, वैसे तो कीड़े प्रोटीन का अच्छा स्रोत हैं। वह इसे पॉप करती है, यह हमारे लिए एक तरह से घृणित है। मुझे लगता है कि वह इसे आंशिक रूप से प्रभाव के लिए कर रही थी, लेकिन उसने इसे पॉप कर दिया। तो मैं जो कह रहा हूं वह धूर्तता है, विभिन्न संस्कृतियों में अलग अलग चीजें। मुझे यह करने दीजिए। डेव स्लशर मेरा एक मित्र है। डेव को ब्रेन ट्यूमर था और ब्रेन ट्यूमर उसकी आंख के ठीक पीछे था। वह क्लीवलैंड क्लिनिक गया और वे उसके सिर में गए और उन्होंने ट्यूमर को बाहर निकाला। यह लगभग एक गोल्फ बॉल के आकार का था। जब वे उसके सिर में थे तो उन्होंने एक तंत्रिका काट दी जो आपकी पलक को इस तंत्रिका आवेग पर ऊपर और नीचे चलाती है। उन्होंने उसकी एक पलक की नस काट दी। तो क्या हुआ कि उसकी पलक नीचे आ गई और वह स्थायी रूप से झुक गई। इसलिए वह एक आंख से तो देख सकता है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी पलक झुकी हुई थी। अब जब कुछ समय बाद आपकी पलक नीचे चली जाती है तो आपकी आंख का क्या होता है? क्या आपकी आंख खराब हो जाएगी? और इस प्रकार वह एक आंख से अंधा हो गया। इसलिए अब वह लोगों के पास जाते हैं। जब लोग देव के पास आते हैं तो वह बहुत मिलनसार व्यक्ति है और एक अद्भुत बातचीत करने वाला, एक आनंददायक बड़ा व्यक्ति है। वह लोगों के पास आता है। क्या वह लोगों की आंखों पर नजर रखेगा कि वे कब क्या करते हैं? हाँ, वह उनके पास आता है, वह उनसे बात करेगा और वह पूरे समय उनकी आंखों पर नजर रखता है। क्या वे उससे बात करते हुए इधर उधर देखेंगे? फिर अचानक क्या वह देखेगा कि उनकी आंखें बस उस झुकी हुई पलक को घूर रही हैं? हाँ, अब वैसे अगर वह बच्चों से बात कर रहा है तो क्या बच्चे सचमुच नाटकीय होंगे? क्या आपके माता पिता ने कभी आपसे कहा है कि घूरना मत? तो आप देव के पास आते हैं और उसकी नजर बुरी है और अचानक आप कहते हैं, पवित्र गाय, उसे देखो। अब आप भगवान की पूजा करने आ रहे हैं। क्या ईश्वर चाहता है कि आप उसकी आंखों में देखते रहें या ईश्वर चाहता है कि आप पूजा में उसके बारे में सोचें? आप एक ऐसे पुजारी के पास आते हैं जिसका हाथ विकृत है। आप अपनी भेड़ या बकरी को बलि चढ़ाने के लिए लाते हैं और आपके पास एक विकृत हाथ वाला पुजारी है। आप क्या देखने जा रहे हैं? यह एक सशस्त्र पुजारी आपकी भेड़ों को नीचे ले जा रहा है। मुझे खेद है, लेकिन यह आदमी यह काम कैसे कर रहा है? उसका एक हाथ भेड़ों को नीचे ले जाने वाला है। क्या हर कोई यह सोच रहा होगा कि यह आदमी इसे कैसे पूरा करेगा? मैं उतना अजीब नहीं हूं, आप लोग भी यही सोचते हैं। आप यह कहने में बहुत विनम्र हैं। लेकिन मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि क्या आप देखते हैं कि यह पूजा से ध्यान कैसे हटा सकता है? हर कोई सोच रहा होगा, यह आदमी वहां इस भेड़ से कैसे कुश्ती लड़ेगा? तो इसलिए भगवान कह रहे हैं, मुझे एक अलग शब्द का उपयोग करने दीजिए, मुझे वह नहीं चाहिए जो गैर सामान्य है। दूसरे शब्दों में, मैं चाहता हूं कि चीजें सामान्य रहें ताकि जब आप आएं तो कुछ भी अजीब न हो। जब आप मेरी उपस्थिति में आते हैं तो सब कुछ सामान्य होना चाहिए ताकि आप मुझ पर ध्यान केंद्रित कर सकें और इन अन्य चीजों से विचलित न हो। इसलिए उदाहरण के लिए, जब आप अपना नंबर करते हैं तो आप इसे शिविर में नहीं करते हैं। अब अचानक कोई शिविर में पूजा करने जा रहा है और अचानक उपग्राहक वे इसमें कदम रखते हैं और वे इसे मिटाने की कोशिश करने लगते हैं और वे पूजा करने जाते हैं और उनके पैरों पर यह सामान लग गया है और इससे बदबू आ रही है। परमेश्वर कहते हैं, इसे छावनी से बाहर निकालो। जब आप मेरी उपस्थिति में आते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप मुझ पर ध्यान केंद्रित करें। तो यही सामान्य बात है। अब वैसे जो सामान्य है, क्या वह अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग होगा? और इसलिए जो संपूर्ण है उसकी अनुमति है, क्योंकि भगवान उनकी संस्कृति को जानते हैं और वह कहते हैं, वह जो संपूर्ण है। जब तुम मेरे सामने आओगे तो मैं चाहता हूं कि सब कुछ सामान्य हो। जब आप मेरी पूजा करने आ रहे हो तो मैं नहीं चाहता कि कुछ भी असंगति पैदा हो। तो यह स्वादिष्ट दृष्टिकोण, मुझे लगता है कि प्रत्येक संस्कृति में ये स्वादिष्ट चीजें होती हैं और भगवान का कहना है, जब आप पूजा करने आ रहे हो तो ऐसा मत करो। इसलिए मुझे यह पसंद है, क्योंकि यह कुछ कठिन बातों की व्याख्या करता है और कुछ ऐसी बातें बताता है जिन्हें हम संस्कृति के बारे में नहीं जानते हैं। ऐसा लगता है कि एक सांस्कृतिक भेदभाव है, ताकि पूजा के कार्य में ध्यान आसपास के विवरणों के बजाय भगवान पर केंद्रित किया जा सके। AB कोशेर खाने के नियम 79, 33, 86, 52। अब हम कोशेर कैसे खाते हैं? मैं आपको पिछली कक्षा में बता दूं कि नैट वास्तव में यहूदी है और मुझे नहीं पता कि यहाँ कोई भी यहूदी है या नहीं। जब आप किराने की दुकान पर जाते हैं तो क्या करते हैं? आप कैन उठाते हैं और देखते हैं, इसमें के साथ एक वृत्त है। यह कोशेर है। मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन वास्तव में नहीं। क्या आप लोग डिब्बे पर के बारे में जानते हैं? हाँ, तो अगर इसके डिब्बे पर के है तो यह कोशेर है। आप असली कोशेर भूमि के जानवरों को कैसे खाते हैं? जमीन पर रहने वाले जानवरों के लिए दो नियम हैं। उन्हें क्या करना है? खुर फाड़ो और जुगाली करो। तो क्या गोमांस अच्छा है? गोमांस अच्छा है, भेड़ अच्छा, बकरियां अच्छी हैं। सुअर अच्छे नहीं हैं, क्यों? वे खुर तो फाड़ देते हैं परंतु जुगाली नहीं करते, इसलिए सुअर का मांस कोशेर नहीं है। वैसे क्या उन दिनों भी सुअर के मांस में ट्राइकिनोसिस की समस्या थी? तो सुअर का मांस खत्म हो गया है। आप किसी यहूदी व्यक्ति के पास जाइए, आप कहते हैं, अरे चलो हैम और पनीर लेने के लिए बाहर चलें। ठीक है, अब हम दोनों के बीच, क्या मैंने यहूदी लोगों को सुअर का मांस खाते देखा है? हाँ, क्या एक अन्य जाति के रूप में आपको उन्हें सुअर का मांस देना चाहिए? क्या यह अपमान है? एक बार की बात है, याद रखें, मैंने आपको शनिवार की रात को बताया था, यरूशलेम में हर कोई पार्टी कर रहा है। एक बार मैं रिची पिज्जेरिया में पिज्जा लेने गया हुआ था, तो हम बाहर जा रहे हैं और कुछ पिज्जा लेने जा रहे हैं। ये सभी लोग पिज्जा के लिए अपने ऑर्डर को आगे बढ़ा रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, और अचानक कोई चिल्लाता है, यह सच्ची सच्चाई है, पेपरोनी पिज्जा। और अचानक ये सभी लोग जो चिल्ला रहे हैं, पूरी जगह एकदम खामोश हो जाती है। अब समस्या क्या है? आपने मेरे बाल देखे, उन दिनों मेरे बाल हुआ करते थे। क्या यह स्पष्ट है कि मैं यहूदी नहीं हूं? हर कोई इधर उधर देख रहा है। क्या वे किसी अन्य जाति की तलाश कर रहे हैं? मैं एक अन्य जाति था। क्या यही वह समय है जब आप वहां से निकल जाएं? तो अचानक आप पीछे हटने लगते हैं, आपको एहसास होता है कि क्या हुआ है। मैंने यह नहीं किया, मैं इतना मूर्ख नहीं हूं, मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन वे इधर उधर देख रहे हैं और मैं एक अन्य जाति हूं, और इसलिए हम बस पीछे हट गए और फिर जितनी तेजी से हम कर सकते थे उतनी तेजी से आगे बढ़े, क्योंकि यह अच्छा नहीं है। पेपरोनी पिज्जा, ऐसा मत करो। हैम न करें, क्योंकि हैम कोशेर नहीं है। अब ये ज़मीनी जानवर हैं। समुद्री जीवों के बारे में क्या? समुद्री जीवों के लिए दो नियम। समुद्री जीवों को वास्तव में इसे इसी तरह करना होगा। मछली के लिए सामान्य क्या है? इसमें शल्क और पंख होते हैं। क्या वह सामान्य मछली है? इसमें शल्क और पंख होते हैं। तो क्या आप देखते हैं कि वह सामान्यता वाली बात यहां कैसे फिट बैठती है? अब इसका मतलब क्या है? बास अच्छे हैं, ट्राउट अच्छा है, नॉर्दर्न पाइक अच्छा है, और वाले अच्छा है। हम अन्य कौन सी खेल मछली खाते हैं? सामन अच्छा, हलीबूट अच्छा, कैटफिश के बारे में बताएं। कैटफिश में क्या समस्या है? तराजू और पंख। क्या तुम लोगों ने कभी कैटफिश उठाई है? कैटफिश को इसमें क्या मिला है? त्वचा, तराजू नहीं। यह ऐसा है जैसे मछली की त्वचा होती है, इसलिए वे कैटफिश नहीं करते, वे लॉबस्टर भी नहीं करते। दरअसल जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी भी कैटफिश पकड़ते थे। मुझे कैटफिश पसंद है, लेकिन अगर आप यहूदी हैं तो यह कोशेर नहीं है। यह एक और बात है जो लोगों ने सुझाई है, क्योंकि वे निचले स्तर के लोग हैं और ऐसी चीजें हैं जहां बीमारी की संभावना भी अधिक होती है। मैं पीछे मुड़कर देखता हूं और कहता हूं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे यह सामान्य विचार पसंद है कि पंख और शल्क वाली मछली सामान्य है। मुझे लगता है कि मैं इसे बॉटम फीडर के ऊपर ले लूंगा, क्योंकि आप जानते हैं, एक और मछली जिसे हमने कभी नहीं खाया वह कार्प थी। कार्प नीचे से चूसने वाले होते हैं, लेकिन उनके पंख और शल्क होते हैं। मैं किसी भी दिन कार्प की बजाय कैटफिश खाना पसंद करूंगा। हाँ, चलिए इस पर आगे बढ़ते हैं। हमें उड़ने वाले जीव मिले हैं। किस प्रकार के उड़ने वाले जीव? कोई शिकारी पक्षी नहीं। शिकारी पक्षी क्या हैं? शिकारी पक्षी वे पक्षी हैं जो खून खाते हैं। क्या आपको यह लगता है कि खून खाना अच्छा नहीं है? यहूदी लोगों को खून खाने की अनुमति नहीं है। शिकारी पक्षी खून खाते हैं। क्या आप बाज खा सकते हैं? कोई बाज नहीं। गिद्ध अच्छे या बुरे? खराब। उल्लू अच्छा या बुरा? खराब। इनमें से कोई भी प्रकार के शिकारी पक्षी जैसे गिद्ध, बांस, उल्लू और इस प्रकार के। तीतरों के बारे में क्या? तीतर अच्छा। मुझे टर्की का एक परिवार मिला है जो अब मेरे आंगन में प्रतिदिन आता है। क्या टर्की अच्छे हैं? टर्की अच्छे हैं। अन्य किस प्रकार के पक्षी? ओह, बटेर। क्या यहूदी बटेर खाते थे? क्या हम यह जानते हैं? जंगल की बटेरों को याद करो। अब यहाँ चौथा है कीड़े। वे वास्तव में उन्हें कीड़े खाने की अनुमति देते हैं, हॉपर हाँ, फ्लायर्स नहीं। क्या आप मुझे किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं जिसने टिड्डे खाए हों? क्या बाइबल से किसी को पता है कि कोई व्यक्ति टिड्डे खाता था? हाँ, जॉन द बैप्टिस्ट। जब मैं सिनाई में था, ओरा, जो हमारी टूर गाइड थी, हम 3 सप्ताह के लिए सिनाई में बाहर थे, उसने हमें हर जगह घुमाया। उसने कहा, आप सवारी नहीं कर रहे हैं, आप चल रहे हैं। उसने हमें चलने के लिए प्रेरित किया और एक स्थान पर उसने कहा, मैं तुम्हें यहाँ तक चलने के लिए कह रही हूँ। हमें पहाड़ी के ऊपर तक चलना था। और उसने कहा, जब तुम वहाँ ऊपर जाओ, उसने कहा, इन काली टिड्डियों से सावधान रहना, उनके पास काले टिड्डे हैं। क्या रेगिस्तान में कई चीजें जहरीली होती हैं? उन्हें हमला करने का केवल एक मौका मिलता है और उनमें से कई जहरीले होते हैं। उसने कहा कि ये काले टिड्डे थूकेंगे और जब वे थूकेंगे तो यह मधुमक्खी के डंक जैसा होगा। उसने कहा, अगर यह तुम्हारी आंख में लगेगा तो यह तुम्हारी आंख निकाल लेगा। तो हम वहां हैं, इस रास्ते पर चल रहे हैं और सोचिए क्या अचानक ठीक हमारे सामने एक काला टिड्डा ऐसे बैठ जाता है। तो मुझे यह काला टिड्डा दिखाई देता है। मैंने कहा, अरे, मैं अमेरिका से आया हूं, मुझे एक काला टिड्डा देखना है। मैं इस चीज की एक तस्वीर लेने जा रहा हूं, तो मैं वहां उतरने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे चश्मा मिल गया है, मेरे पास एक कैमरा है। तो मैं इस काले टिड्डे के पास पहुंच रहा हूं। इस बीच मेरी पत्नी चिल्ला रही है, काला टिड्डा, दौड़ना, दौड़ना, काला टिड्डा। मैं यह तस्वीर पाने की कोशिश कर रहा हूं। समस्या यह थी कि जब आप इसे टेलीफोटो लेंस के बिना करते हैं तो समस्या क्या है? मेरी तस्वीर में काला टिड्डा काले रंग का एक छोटा सा टुकड़ा है और मैंने तस्वीर को पूरी तरह से उड़ा दिया है। वैसे भी यह एक आपदा थी, इसलिए उस काले टिड्डे से दूर रहें। ओह, वैसे टिड्डे, मैंने हमेशा कहा, टिड्डों को बैटर में डालें, उन्हें चिकन विंग्स कहें, किसी को अंतर पता नहीं चलेगा। क्या कीड़ों में उच्च प्रोटीन होता है? हाँ। और इसी तरह कीड़ों के लिए हॉपर हाँ, फ्लायर्स नहीं। हॉपर टिड्डे होंगे, टिड्डे टिड्डिया, उस तरह की चीज, जबकि फ्लायर्स मधुमक्खियां और मच्छर जैसी चीजें होंगी। एसी लैव्य व्यवस्था में 3 समस्याएं, 86, 53, 90, 29। अब 3 समस्याएं सामने आती हैं और हम इस स्लाइड को समाप्त करने के बाद इसे बंद कर देंगे। मेरा एक मित्र केविन कैर था जो एक धर्मनिरपेक्ष विश्वविद्यालय में था। धर्मनिरपेक्ष विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने कहा, बाइबल वैज्ञानिक त्रुटियों से भरी है। तो केविन एक बुद्धिमान पटाखा होने के नाते अपना हाथ उठाता है और कहता है, मैंने कई बार बाइबल पढ़ी है और मैंने कभी कोई वैज्ञानिक त्रुटि नहीं देखी है। प्रोफेसर कहते हैं, ओह, सचमुच आपने पूरी बाइबल पढ़ी है ना? लैव्य व्यवस्था 11:6 के बारे में क्या? और आप केविन को रोते हुए देखते हैं, लेविटस। वह एक ईसाई है। क्या वह लैवियकुस को अच्छी तरह जानता है? तो प्रोफेसर कहते हैं, लैव्य व्यवस्था 11:6 में यह कहा गया है कि खरगोश जुगाली करता है। खरगोश अपना पागुर नहीं चबाता, वैसे क्या यह सच है? जुगाली करने के लिए कितने पेट चाहिए? क्या आपको जुगाली करने के लिए कई पेटों की जरूरत है? खरगोश अपना जुगाली नहीं करता। क्या वह सही है? यह सही है। हालांकि क्या बाइबल हमेशा वैज्ञानिक संदर्भ में बात करती है? क्या खरगोश ऐसा दिखता है जैसे वह चीजों को चबा रहा हो? अब यह संभव है, क्या यह दिखावे की भाषा है? दूसरे शब्दों में उपस्थिति की भाषा आवश्यक रूप से एक वैज्ञानिक विवरण नहीं है कि यह वास्तव में उनके पेट से निकला है। खरगोश अपने भोजन को बार बार चबाता है। क्या यह भी संभव है कि यह शब्द खरगोश एक गलत अनुवाद है और यह वास्तव में एक रॉक बिज्जू के बारे में बात कर रहा है? दूसरे शब्दों में, जब आप देशों के बीच जाते हैं और आप 3000 साल अलग होते हैं, तो क्या यह संभव है कि आपने जानवरों के बीच अनुवाद गलत कर दिया हो? तो यह एक अनुवाद समस्या हो सकती है। हो सकता है कि यह सिर्फ दिखावे की भाषा हो। दूसरा है चमगादड़। अध्याय 11 श्लोक 19 में चमगादड़ों को पक्षी माना गया है। चमगादड़ों को पक्षियों के समूह में रखा गया है और आप चमगादड़ों के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। मैंने आपको प्रोबो नाम के इस व्यक्ति के बारे में बताया था जो जेल में था। प्रोबो जेल में एक अविश्वासी था। जब प्रोबो कक्षा में आता है तो अपना हाथ ऊपर उठाता है और कहता है, प्रोफेसर, मुझे बाइबल में एक त्रुटि मिली है। और वह कहते हैं, यह कहता है कि चमगादड़ पक्षी हैं और हर कोई जानता है कि चमगादड़ पक्षी नहीं हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, एक टमाटर, यह क्या है? यह एक फल है। प्रश्न, यदि आप किसी अन्य संस्कृति में हैं और वे टमाटर को सब्जी कहते हैं तो क्या होगा? क्या ये बहुत बड़ी बात है? क्या पूरी दुनिया को अमेरिकी वर्गीकरण प्रणाली का उपयोग करना होगा? क्या चमगादड़ पक्षी की तरह उड़ता है? आप कहते हैं, ठीक है, चमगादड़ एक स्तनपाई है। क्या उन्हें बिल्कुल हमारी वर्गीकरण प्रणाली का पालन करना होगा? नहीं, वे चीजों को हमसे अलग तरीके से वर्गीकृत करते हैं। तो यह सिर्फ वर्गीकरण अंतर का मामला है। वहां पूरी बात न चुकें। तीसरी बात जो लेविटिकस की किताब में एक समस्या है, जिससे बहुत से लोगों को समस्या है, वह समलैंगिक व्यवहार के खिलाफ यह निषेध है। लैव्य व्यवस्था 18:22 और 20:132 अंश हैं जो सामने आते हैं और कहते हैं, मनुष्य को दूसरे मनुष्य के साथ नहीं सोना चाहिए जैसी बात। तो लैव्य व्यवस्था की पुस्तक में ये तीन समस्याएं हैं। अब अगली बार हम बलि प्रथा के बारे में बात करेंगे। हम अगली बार लेविटिकस को समाप्त करेंगे। तो अपना ख्याल रखना। यहाँ एक लंबे सप्ताहांत के साथ अच्छा समय बिताएं। यह डॉक्टर टेड हिल्डेब्रांट अपने पुराने नियम के इतिहास और साहित्य पाठ्यक्रम लेविटस की पुस्तक पर व्याख्यान नंबर 13 में हैं, पवित्रता, पवित्रता कानून और समस्याएं। मेगन साइड्रोपोलोस द्वारा लिखित, टेड हिल्डेब्रांट 2 द्वारा रफ संपादित।